الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اسے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ نگران شورا دعوت قادم القدسیہ کا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کرونا کے بعد کے اثرات. ایسی بات ہے ڈاکٹر زیرک آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود مدنی چینل کے مدینہ اسٹوڈیو میں ماشاءاللہ ڈاکٹر زیرک صاحب بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے ڈاکٹر سلمان اتاری صاحب آپ بھی موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم اس عنوان پر آج انشاءاللہ پروگرام کریں گے. آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. میں چاہوں گا ڈاکٹر سلمان صاحب آپ تھوڑا اس پروگرام میں کیا کیا چیز آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں کیا کیا پہلو ڈائمینشنز اس کی رہیں گی، اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
اس سلسلے کے اندر جیسے آپ نے بولا نا کرونا کے بعد کے اثرات،
جی
کیونکہ ڈاکٹر زیرک ماہر نفسیات ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں مستند، تو ہم اس پہ توجہ دلانے کی کوشش کریں گے اور اویئرنیس دینے کی لوگوں کو کوشش یہ کریں گے. نیت یہی ہے کہ کرونا آیا، اس کا امپیکٹ ہوا. نگران شورا نے جو سلسلہ کیا تھا کم و بیش 23 مارچ کو، آج سے 4 ماہ پہلے، اس میں مفتی قاسم صاحب موجود تھے. مفتی قاسم صاحب نے اس سلسلے میں آج سے کم و بیش 4.5 ماہ پہلے یہ بیان فرمایا تھا، کرونا تو چلے جائے گا لیکن انسانی ذہن پہ نگیٹو اثرات چھوڑ کے ضرور چلے جائے گا. تو اسی کو ہم نے یہ لینا ہے. اب چونکہ کرونا چلے گیا یا کسی حد تک موجود ہے، کچھ لوگ لاک ڈاؤن میں گئے اور لاک ڈاؤن سے نکل گئے یا کرونا سے متاثر بھی ہو گئے، کسی کا فائنینشیل ایشو ہوا، کسی کا فیملی ڈسپیوٹ ہوا، تو یہ ساری چیزیں اب بیک ٹو نارمل لائف کو آپ کو آنا ہے. تو آپ کو بیک ٹو نارمل لائف آنے میں کیا کیا مشکلات، جیسے ہمیں فیلڈ میں ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، یہ اس کی مزید وضاحت کریں گے
جی.
کہ یہ سمجھ لیں کاؤنسلنگ سیشن ہے
ماشاء اللہ، بڑا پیارا یہ سیشن ہے. اگر جیسے آپ فرما رہے یوں یہ چلے گا، میرے ذہن میں جو پہلی بات ہے جس کو میں فیل بھی کرتا ہوں، محسوس بھی کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب دو جسے آپ کہہ سکتے ہیں زندگی کے ادوار، ایک اس سے پہلے کا، اس پینڈیمک سے پہلے کا، اور ایک ابھی اس کے بعد کا. اس سے پہلے کا زندگی معمول پہ تھی، بچے اسکول جا رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، مطلب نظام چل رہا ہے، مدرسے والے مدرسے میں جا رہے ہیں، جامع المدینہ والے جامع المدینہ میں آ رہے ہیں، علم دین پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ہے اجتماعات ہو رہے ہیں، لوگوں کا ماشاءاللہ مسیح کی طرف ایک فلو جو ہے وہ رہا، اب بھی ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن جسے دیکھا جائے کہ جو سست لوگ تھے ان کو مزید ایک بہانہ مل گیا، یار باہر نہیں جانا، وہ مزید سستی کا شکار ہو گئے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے ابھی جو روٹین ہے یہ بریک ہو گئی، روٹین بریک ہوئی، بندہ ایک نیو جسے یوں بولیں کہ اپنی زندگی کے نیو پورشن کے اندر جو ہے وہ چلا گیا، جہاں اس کی پہلے والی روٹین نہیں چل سکتی، وہ چھوڑ دی، اب ایک نیا شروع ہو گیا، میں گھر پہ ہیں، گھر پہ ہی رہنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہ جو کام کرتے تھے اب ان کی واپس نارمل لائف ویسے ہی آ جائے، جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے وہ واپس ویسی لائف میں کس طریقے سے آسانی سے آ سکتے ہیں؟
دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کرونا کے بعد ہماری اب ایک نیو روٹین بنے گی، ایک ڈیفرنٹ روٹین بنے گی
جی.
اور اس میں جو بنیادی پہلو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کرونا وائرس کے کیسز جو ہے وہ کتنے ہیں اور اس کی صورتحال کیسی ہے. ظاہر ہے کہ جب تک اس کی کوئی ویکسین نہیں آ جاتی اور اس کا کوئی اوور آل کنٹرول نہیں ہوتا تو ہوگا کیا، جو جب سردی وغیرہ آئے گی تو اس کے کیسز بڑھیں گے، कई साल तक तो अब ये सिलसिला ऊपर नीचे चलता
रहेगा।
एक तो हमें ये जहन में रखना है,
ठीक है,
कि ये जो अभी आइंदा आने वाले जो कई साल होंगे इसमें कोरोना वायरस के, जैसे मिसाल के तौर पर अभी भी देख लिया जाए कि लॉकडाउन हुआ तो जाहिर है कि कोरोना वायरस के केसेस नीचे हुए। अब यूरोपियन ममालिक जहां पर लॉकडाउन कई ममालिक में काफी यानी कि वीक्स से या महीनों से मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ लॉकडाउन खत्म हुआ, तो वहां क्या देखा गया कि लोगों ने जब दोबारा घुलना मिलना शुरू किया, जब दोबारा से जो है वो एहतियात के हवाले से या सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से उसमें वो कमी आई तो केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो एक तो इस बात का हमें वो ख्याल रखना पड़ेगा बिलखसूस कि ये जो पहले जैसे हमारा होता था इंटरेक्शन वो जो है वो मुमकिन है कि ना हो, जब तक के कोई ऐसी वैक्सीन ना आ जाए। मिसाल के तौर जैसे फ्लू का वायरस है, ये अब हर साल आता है जाता है, लेकिन अगर 100 साल पहले देखा जाए तो जिस तरह अब कोरोना आया है तो इसी तरह तकरीबन ये फ्लू वायरस इसी तरह आया था, उस वक्त भी लॉकडाउन या क्वारंटाइन वगैरह ये सारे हुआ था, लेकिन अब फ्लू जो है वो ऐसा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है कि हम में से अक्सर को मालूम ही नहीं होता कि ये आया गया। तो ये मुख्तलिफ मराहिल से आगे वाले कई सालों तक तो हमें गुजरना पड़ेगा, एक न्यू नॉर्मल आएगी, उसमें ये होगा कि कुछ वक्त के लिए हम वाकई जो आप कह रहे हैं कि जैसे जामियतुल मदीना के तलबा वापस आ जाएंगे या दीगर जिंदगी की चीजें जो है वो नॉर्मल के करीब आएंगी, लेकिन फिर कुछ पीरियड के लिए जब ये मिक्सिंग होगी और कोरोना वायरस के केसेस चाहे वो वेदर की वजह से हों या हमारी कमजोरियों की वजह से हों या जनरल जो इसका प्रोसेस है उसकी वजह से हों, तो ये अब अप डाउन चलता रहेगा।
नहीं, वो रूटीन जो चेंज हो गई, पहले स्कूल जाने का था अब नहीं है, पहले मतलब एक काम करने का था अब वो उस पर भी काफी वो आ गया, वर्क फ्रॉम होम आया तो उसमें भी कई लोग तो जो है, निगरानी शुरा भी हमारे साथ माशाल्लाह प्रोग्राम में मौजूद है, अल्लाह ना मुबारक फरमाए, रूटीने तब्दील हो गई, यानी वर्किंग सिचुएशन घर में है, लोग अब कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं और कितना मतलब उसमें कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने घंटे क्या कर रहे हैं, ये भी एक अलग बात है भारत। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये नॉर्मल लाइफ की तरफ जाने में अब शायद लोग ये भी सोचते होंगे, या कम अज कम मेरे जहन में तो ये आ रहा है कि ये सारा 4 महीने ये 5 महीने जो गुजर गए, अब ये जब दोबारा अपनी वापस जाएगा कैसे जाएगा, ये बच्चे अब स्कूल जाने को तो बच्चों को छुट्टी हो जाए तो बच्चे समझते हैं कि भाई कमाल हो गया, तो ये कैसे सारा रिवर्स होगा, होगा नहीं होगा, क्या सोचते हैं आप इस पर?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। आप इस माशरे में रहते हैं, गली मेले में ही आगे पीछे रहते हैं, आप उसी जमीन पे रहते हैं जहाँ कोरोना आया है, आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया?
मेरी जिंदगी में तो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आया।
आपके जैसे कितने होंगे?
मेरे जैसे काफी होंगे,
वो उसको माइनस करें, उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया।
सही,
आप अपने बारे में सोचो, आपकी जिंदगी में कितना फर्क आया, आपकी जिंदगी में कितना फर्क आ गया, वो बहुत बड़ा तब्दीली आ गई।
यूं देखा जाए अगर ओवर हो तो ऐसा
बहुत बड़ी तब्दीली आपकी जिंदगी में नहीं आई है। ऐसे डॉक्टर पेशेंट बढ़ गए होंगे, अगर अल्लाह का शुक्र है आप किसी पेशेंट की फीस लिस्ट में शामिल नहीं हुए, ना आपके साथ 2 फैमिली इशूज हुए जो आप सुनते थे, यानी शायद ऐसे मुझे लगता है कि माशरे में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सुना है कि कोरोना से यही हो जाता है।
हाँ जी,
इनकी जिंदगी में एज सच कोई बहुत बड़ी देखिए चेंजेस सिर्फ इतनी कि अगर बाहर बंद है तो मुझे इस बात का एहसास होगा कि बाहर कुछ बंद है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फिजिकल लाइफ, अपनी मेंटली हेल्थ की बात करें तो अच्छा एज सच अगर लॉक करोड़ों लोग हैं जिनकी जॉब पर भी कोई असर नहीं हुआ, तो ये इस तबके को तो हम माइनस तो करेंगे ना कि भाई ये वो तबका है जो अल्लाह की रहमत से इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि 1.9 करोड़ लोगों को कोरोना ने इफेक्ट किया दुनिया में, 1.9 करोड़, 7.5 अरब की इस आबादी में जहां 200 या इससे जायद मुल्क या इलाके या शहर इफेक्टेड हुए, उसमें 7.5 अरब की कमोबेश दुनिया भर की आबादी है, और 7.5 अरब की दुनिया भर की आबादी में آپ یہ دیکھیے کہ یہ 1,90,00,000 کو کرونا نے رجسٹرڈ کیسز کی بات کرے تو افیکٹڈ کیا, اور اس میں سے تقریباً 1,10,00,000 یا 20,00,000 ریکورڈ ہیں. جیسے کہ مطلب اتنے زیادہ ریکورڈ تو لوگ کئی اور بیماریاں جس سے نہیں ہوتے, یعنی اگر مثال کے طور پر کینسر جتنوں کو ہوا, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے,
امین,
تو کیا کینسر سے ریکورڈ ہونے والوں کی پرسنٹیج اتنی زیادہ ہے جتنی کورونا کی ہے. اس طرح اور کئی ایسی ڈیزیز ہیں کہ جن میں اگر کوئی خدا نہ خاصا مبتلا ہو جائے, بھلے وہ 10 ہوتے ہوں, 10 میں سے 1 یا 2 ریکورڈ کیسز ہوں گے آپ کے پاس, باقی 7 یا 8 وہ ہوں گے جو ایکسپائر ہو چکے ہوں گے. تو اگر یوں دیکھا جائے تو کرونا, جیسے آپ نے مثال دی, بخار سے جیسے لوگ ریکورڈ ہو جاتے ہیں, اب بخار اگر نمونیا میں بدل جاتا ہے, بخار کسی ٹائفائڈ یا کسی اور بیماری میں بدل جاتا ہے اور سیویئر سچویشن اختیار کر جاتا ہے, تو پھر وہ ایک الگ پروسیس میں چلا جاتا ہے. تو کرونا بھی ایک جیسے کہ بیماریاں کے نام ہے, اس طرح ہمارے معاشرے کی ایک بیماری کا نام ہو چکا ہے کرونا. وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں, اور آپ یہ 1,90,00,000 تو رجسٹرڈ بتا رہے ہیں, میری اپنی فیلنگ تو یہ ہے کہ کروڑ ہا لوگوں کو کرونا ہو بھی چکا, انہیں پتہ بھی نہیں چلا, یہ چلا بھی گیا.
اس میں اگر میں یہ یہاں تک جو میڈیکل فیکٹس کے حساب سے کہ جب یہ کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ شروع میں تو مختلف ہوتی, تو اب عوام میں اوپن ٹیسٹنگ ہو رہی ہے بالخصوص ویسٹرن کنٹریز میں, تو اس میں سے تقریباً 1/3 لوگ جن کا ٹیسٹ ہوا ہے ایسے ہیں کہ جن کو کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی, کرونا آیا اور چلا گیا.
تو اس وقت پتا چلا, اس کا زیادہ تر پریکٹیکل جو پتا چلا, سنتے تو تھے جب ہم نے پلازما دینے کی بات کی, اس کے بعد جب ہم نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا, میں نے بھی اپنے اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا تو وہ نگیٹو آیا کہ کچھ نہیں تھا, شکر اللہ کا. لیکن ہمارے ساتھ بھی اور آگے پیچھے بھی کئیوں نے وہی گیا, چلو چیک کر لیتے ہیں, شاید ہم کو ہوا اور اینٹی باڈی پلس آ جائے گا تو ہم پلازما دے دیں گے پروسیس سے نکلنے کے بعد. تو ان کا اینٹی باڈی ٹیسٹ جب کروایا تو پتا چلا ان کا تو کرونا آیا اور چلا بھی گیا, ان کو تو پتا ہی نہیں کہ ان کو بھی کرونا ورونا آیا. تو یہ تھا کہ یہ کبھی آیا تو اس نے کوئی ٹھیک ٹھاک آپ سے میزبانی لی ہے, اور بازوں کے پاس آیا تو اس کو پتا ہی نہیں چلا, میں نے کہا میزبانی کی اور ختم بھی ہو گیا. تو سب سے پہلے تو اس پوائنٹ آف ویو پہ دیکھ لیا جائے. اچھا, ایک اور میں آپ کے سامنے پہلو رکھتا ہوں. کرونا سے پہلے تقریباً 1 عرب سے زیادہ یا 1 عرب کے آس پاس وہ پاپولیشن ہے کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی, 1 عرب کہ وہ غربت کی لکیر سے نیچے تھی. کرونا کے بعد 58 کروڑ کے آس پاس یا 50-60 کروڑ کے آس پاس اس میں اضافہ ہوا, لیکن کرونا سے پہلے آلریڈی 1 عرب سے زیادہ وہ نیچے پہنچے ہوئے تھے. کرونا کے آنے کے بعد چونکہ ڈیفینیٹلی, کیونکہ جب سوشل ڈسٹینسز کی بات چلی اس کے بعد اس میں بھی کئی تھیوریاں بدلی, کئی باتیں آئیں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے. تو ایک تو تھیورو کا بدلنا نا, یہ خود ہی ایک بہت بڑا, میں مجھے تو ایسا لگا کہ شاید پینک کریٹ ہونے میں تھیوری کا بار بار بدلنا بھی رہا ہے, کہ جب تک ایک چیز بہت زیادہ کنفرم نہ ہو اس کو کروڑوں اربوں لوگوں کے اندر وائرل کر دینا, اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد کہنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا ہے نہیں, ایسا نہیں ایسا ہے نہیں ہے, تو آدمی تو ویسے پریشان ہے. تو تھیوریز کے بدلنے کی وجہ سے تو زیادہ پریشانی انسان کو ہو گئی. تو تھیوریز کے ایک تو بدلنا, کیونکہ آپ دیکھیے پاکستان کی اگر میں بات کرتا ہوں ناظرین, اگست کا مہینہ پاکستان کی میں جو پریڈکشن تھی, پیش گوئی تھی, وہ یہ تھی کہ اگست پاکستان میں پیک سیزن ہوگا, یعنی اتنی اموات کسی وقت بھی نہیں ہوں گی جتنی اموات اگست میں ہوں گی. یہ باقاعدہ آن ریکارڈ بات ہے, میں کوئی سیکرٹ بات نہیں کر رہا اسے, یہ پیا کروڑوں کو پتا ہوگا. اور سب سے زیادہ ریلیکسیشن جو مہینہ ایز کمپیئر ٹو پریویس پیریڈ وہ اگست ہے. تو میں نہیں کہتا دنیا میں کرونا ختم ہو گیا, نہیں, کہیں یہی پتا چل رہا ہے بھائی ریورس ہو رہا ہے. اب ریورس ہو رہا ہے یا ٹیسٹ زیادہ ہو رہے جس کی وجہ سے یہ نکل رہا ہے اور اس کو ریورس کا نام دیا جا رہا ہے, کیونکہ تھیوری کو ایک ہے نہیں نا, آپ کس پر بھروسہ کریں گے؟ کبھی کہا کہ جناب آپ اس کو ملیں گے تو
तो ये हो जाएगा, कभी कभी यूं करोगे तो यूं हो जाएगा, इधर हाथ लगाओगे फिर बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा ये भी रिसर्च ही है, क्योंकि एक नई चीज थी, नई चीज पर एक नई रिसर्च हो रही है, नई रिसर्च हो रही है, तो आए दिन जैसे जैसे पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, पेशेंट बनकर दुनिया से जा रहे हैं, तो वैसे वैसे इनकी मालूमात में डेफिनेटली चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। ये भी एक नेचुरली डिस्कशन है, ये कोई, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बहुत बड़ा एब है, बस ये होता है कि आदमी की मालूमात में ग्रेजुअली तब्दीली आती चली जाती है। तो असल चीज ये है कि वो जो चीजें बयान की गई वो सबके सब हुई हैं, ये भी जरूरी नहीं है, और जो अब हो रहा है ये आइंदा होगा ये भी जरूरी नहीं है। कोरोना दुनिया से चला जाएगा यानी कोरोना का मर्ज खत्म ही हो जाएगा ये भी कोई कह नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि अब ये भी थ्योरी है कि भाई जिंदगी भर आप कोरोना के साथ जीने की आदत बना लो। और अच्छा अब हुआ ये कि चूंकि सोशल डिस्टेंसेस पैदा हो गए तो लोगों ने एक मिलना जुलना छोड़ दिया एक दूसरे के साथ, और वो एहतियात के नाम पर वगैरह के नाम पर करने लगे। इससे जाहिर है कि दुनिया भर की जो माशी जो इंडस्ट्री है वो बुरी तरह इफेक्टेड हुई। आप दूर ना जाएं, मेरा दुबई में जाना होता है अरब अमारात में, तो दुबई तो बहुत ज्यादा डिपेंड ही टूरिस्ट पर करता है, यूएई बहुत ज्यादा डिपेंड टूरिस्ट पर करता है, वहां बहुत बड़ा बिजनेस होटलिंग का है, लोगों ने होटलें ली हुई हैं। अब होटल में कौन आकर रुकेगा भाई, जो वहां रह रहे वो तो अपने घरों में रह रहे हैं, होटल में जाकर कौन रुकेगा। तब होटल में जाकर को रुक नहीं रहा, तब होटल सिर्फ एक होटल को देख लेना, जो एक रिहाइश होती है, जो रिहाइश होती है उसमें किचन भी है, कटलरी भी है, उसमें डेकोरेशन भी है, उसमें दुनिया भर की इंडस्ट्री एक होटल की इंडस्ट्री से जुड़ती है। फिर आपकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री इफेक्टेड हुई, तो आप कंस्ट्रक्शन तो सैकड़ों इंडस्ट्री है तो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के साथ है। इसके साथ डेफिनेटली जब टूरिस्ट आना बंद हुआ तो एयरलाइनें भी इफेक्टेड हुई। अब खुद एयरलाइन का आप देखें तो एक एक एयरलाइन टोटल ऑल ओवर देखें तो करोड़ों एम्प्लॉइज दुनिया भर में वो हैं जो एयरलाइन से रिलेटेड है। अब एयरलाइन बंद, जहाज बंद, अगर खुले हैं तो बड़ी ही मतलब के रिस्ट्रिक्शन के साथ हुए हैं। दुनिया में इस वक्त किसी मुल्क में आप जाना चाहते हैं, इस वक्त हालांकि कोरोना का प्रेशर नीचे आया है, लेकिन अब भी आप किसी दुनिया में जाना चाहते हैं तो जनाब आप पहले यहाँ से टेस्ट करा, वहां से टेस्ट करा, वहां से रिपोर्ट लो, यहाँ से रिपोर्ट लो, वहां जाएंगे तो वहां भी हो सकता है कि एयरपोर्ट पर टेस्ट किया जाएगा, फिर आपको एज एहतियाती 2 या 3 दिन के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप थोड़ा मतलब के सेल्फ आइसोलेशन में रहिएगा वगैरह वगैरह। तो ईजी नहीं अब भी। तो ये सारी जितनी भी मुआशी तौर पर जो बदहाली आई है, तो एक इतला के मुताबिक इतने करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे, कैसे अफोर्ड किया जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जो आप कह रहे हैं यार ये तो प्रॉब्लम्स बयान कर रहा है, ये जो हो रहा है मैं ये कह रहा हूं। अब मेरा सवाल आपसे ये है और मेरे साथ बैठे इस नए भाई से ये है कि हमें आज इतना मिली है कि बारिशें आएंगी, दिन दिन से बारिशें आएंगी, तो क्या आप और मैं बारिशें रोक सकते हैं? आपके मेरे हाथ में नहीं है बारिशें रोकना। हम बारिश से बचने की एहतियातें करेंगे, बारिश आई, अब जिन्होंने एहतियात की वो कई नुकसान से बच गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पता था कि भाई 3 दिनों तक जोरदार बारिश आ गई, तो यार एहतियात कर लो, अपने 2-3 दिन यूं नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फला नहीं करेंगे, तो हो सकता है उन्होंने बहुत सारी परेशानियों से बचने की सूरत बना ली हो, जिन्होंने कोई चीज नहीं की थी। तो जब वो चीज होनी है उसके लिए जहन बना लेना चाहिए कि होनी है, अब उससे बचने की क्या सूरत निकालनी है। मैं कम से कम मुतासिर हूं, ये नहीं हो सकता मेरे घर में पानी का एक छींटा भी ना आए, कितना ही बेहतर घर हो पानी के छींटे आएंगे, कुछ ना कुछ पानी रसेगा, कुछ ना कुछ इफेक्टेड चीजें होंगी, हवा चलेगी तो कुछ मिट्टी विट्टी भी घर में आ ही जाएगी, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा खुद को कैसे बचा सकता हूं इस पर गौर करें। कोरोना है, कल चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, अल्लाह चाहे तो लम्हे में खत्म हो जाए और नहीं तो ये रहेगा। हमें कोरोना से बचने के लिए, आइंदा भी बचने के लिए, जैसे हमारे टीबी का मर्ज है फैलता है और कई अमराज फैलते हैं, तो हम उन बचने की कोशिश करते हैं ना, तो उनसे बचने की क्या कोशिश करनी, इस तरफ आना है। और रोजगार के ताल्लुक से आपने अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है, पहले जैसी सिचुएशन नहीं है, ये तो तय है। पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। मैंने सलमान भाई को पूछा कि भाई आप पर क्या असर पड़ा, सलमान भाई ने कहा मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सलमान भाई के खारजी मामला मुतासर होंगे, क्योंकि जब चीजें महंगी होंगी, चीजें बंद होंगी, तो डेफिनेटली इनके घर के आसपास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर सड़क पर कोई प्रॉब्लम है तो इनको असर पड़ेगा, कहीं जा नहीं सकेंगे। तो हम चूंकि माशरे में रहते, जब माशरा इफेक्टेड होता है तो डेफिनेटली सब कुछ इफेक्टेड होता है। किसी एक जगह हड़ताल होती है, कर्फ्यू लगता है, तो शहर के दूसरे इलाके भी उससे अफेक्टेड हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक सड़क अगर बंद हो जाती है तो रश कई सड़कों के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है, लोग इफेक्टेड हो रहे होते हैं। तो ये एक चेन बनी हुई है। तो मेंटली तौर पर तैयार रहें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं माशरे में, हम इसी पर बैठे हुए हैं हुई है, लेकिन मैंने कुछ थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखे कि ये हो चुका है। और अगर ये 58 करोड़ लोग मजीद जो रिपोर्ट किए गए मस्जिद गुरबत की लाइन से नीचे आए, तो ये हमेशा रहेंगे जरूर नहीं, और इतने ही रहेंगे ये भी जरूर नहीं। अब हम खुद को कैसे बचाएं, इस पर गौर करना है। अगर कोई जो बेरोजगार हो गया, मेरा कोई इस्लाम में, जो उस दिन मुफ्ती अली असगर साहब के साथ हमारा प्रोग्राम था खुशगवार यादें, तो इनसे मैंने दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के ताल्लुक से अर्ज की, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास एक केसेस की इन्होंने बात की। तो एक केस जो मुझे याद है वो यही है कि कोरोना की वजह से घर में माशी परेशानी हो गई है और बात तलाक तक आ गई है, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब ये नहीं समझ में आया कि अब पैसे से अगर मोहब्बत मिलती होती तो सारे कोई भी अमीर आदमी बगैर मोहब्बत के ना रहता, पैसे से अगर इत्तेफाक और अमन मिलता तो कोई भी अमीर आदमी अमन और इत्तेफाक के होते, क्योंकि पैसे से मिलता वो खरीद लेता। लेकिन इतना मुझे पता है कि ना अमन, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना इत्तेफाक, ये पैसे से नहीं मिलता, ये इंसान के नेचर से मिलता है। अब नेचर को कंट्रोल करने के लिए बंदा अगर अपने नेचर को पैसों से रिलेटेड कर देगा कि सहूलतें आएंगी तब नेचर अच्छा होगा, तो नेचर सहूलत नींद तो नहीं है ना कि भाई नींद सही होगी तो नेचर अच्छा होगा, नींद एक अलग शे है, वो भी पैसों से नहीं मिलती भाई। अगर अल्लाह इस नींद को भी छीन ले तो दुनिया की शायद को ना मेडिसिन दिला सकती है ना कोई ताकत दिला सकती है। तो अल्लाह चाहेगा तो आपको एक अच्छी नींद अता फरमाएगा। आप 8 घंटे सोकर उठे हैं तब भी आप फ्रेश नहीं है, आप 3 घंटे सोकर उठ जाए तो अल्लाह चाहे तो आपको फ्रेश कर दे।
क्या बात।
तो एक नेचुरली चीज अलग है, लेकिन कुदरत की अपनी उसके नजारे। तो ये जो घर इफेक्टेड हुए सलमान भाई, मैं कहें तो डॉक्टर से एक डॉक्टर साहब से एक बात ले ली जाए, ये जो घर इफेक्टेड हुआ जिससे लोगों की सोचें चेंज हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल के वो लोग आपको सुन रहे हैं डॉक्टर जीरक के, जिनके घर इफेक्टेड हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके घरों में हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, जिन्होंने अपनी कुछ चीज़ें चेंज करनी थी, सोफे चेंज करने थे, पर्दे चेंज करने थे, वगैरह वगैरह चीज़ें चेंज करनी थी, कुछ इवेंट घर में था कैंसिल हो गया, और या कुछ और चीज़ें थी जो करनी थी अब नहीं हो पा रही क्योंकि फाइनेंशियली पोजीशन नहीं है, और घर में हो रही है लड़ाई झगड़े, बच्चों ने कहा था, अबू आपने कहा था नेक्स्ट ईयर जाएंगे, अब नहीं जा पा रहे, तो वो जो फैमिली के अंदर जो स्ट्रेस इस्टेब्लिश हो चुका है, जो पैनिक इस्टेब्लिश हो चुका है, उसको आप किस तरह रिलीज करेंगे?
बुनियादी तौर पर इसको अगर देखा जाए तो देखिए, दो चीजें हैं, हमारी ख्वाहिशात और दूसरा है हमारे जज्बात। ख्वाहिशात जब तक तो पूरी होती रहती हैं तो जज्बात जो है वो एक कंट्रोल में रहते हैं। जब ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो अब जज्बात ऊपर नीचे होते हैं, जब जज्बात ऊपर नीचे होंगे तो अब आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसमें बुनियादी तौर पर तो जैसे आपने बात की कि जहां हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की प्लानिंग करते हैं कि मतलब बारिश आने से पहले ये कर लें, तो अब इसमें बहुत ज़रूरी है कि एज अ जनरल भी, खाली कोरोना वायरस के लिए नहीं है, कि हम अपने जज्बात और अपने जो नीड्स हैं, ख्वाहिशात हैं, उनको अंडरस्टैंड करें। पहले आप भी कितनी दफ़ा तज़किरा करते हैं कि इसमें से ज़रूरत कितनी है मेरी ख्वाहिशात की और लग्जरी जो है ये कितनी है। वो अक्सर हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हमारा कदम होता है ख्वाहिशात के हवाले से, اور پھر جذبات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کہاں میرا جو جیسے مجھے غصے کی کیفیت آ رہی ہے تو اب کہاں مجھے یہ غصہ لاگو کرنا ہے نہیں کرنا. میرا اگر دیکھے نا کہ جتنا بھی اس میں سائیکالوجی کا نالج لے لیا جائے, میڈیکل کا نالج لے لیا جائے, الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے امیر اہل سنت نے جو ترغیب دلائی مدنی نامات کے ذریعے کہ احیاء العلوم کا مطالعہ کریں, منہاج العابدین کا مطالعہ کریں, اگر ان چیزوں کا مطالعہ کریں تو امام غزالی یہ اپنے دور کے فلاسفر بھی رہے ہیں اور ان کی کتب پڑھی جائیں نا تو اس میں آپ کو نفسیات کی بہت بڑی ایک جھلک نظر آتی ہے. تو اس میں انہوں نے تین چیزوں کا مطلب اپنی کتابوں میں جو ایک نچوڑ ہے ان کا کہ تین چیزیں, علم, جذبات کو یعنی غصے کو قابو کرنا اور خواہشات کو قابو کرنا. یہ اگر تین چیزیں بحثیت مسلمان ہم اپنے دین اسلام کے نظریے میں دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اور سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اس میں تھیوری نہیں ہے. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ وقت ہے, مطالعہ کریں, اپنے جذبات کو قابو میں کریں, اپنے خواہشات کو قابو میں کریں, اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ سکھائیں کہ خواہشات جو ہیں یہ بنیاد کون سی ہیں. بچوں کی اکثر عادت ہوتی ہے, کیونکہ بعض دفعہ کئی ایسے کیسز سوشل میڈیا کے ذریعے سننے کو ملے ہیں, بچے بھوکے تھے, رو رہے تھے, یا انہوں نے کوئی خواہش کی والدین پوری نہ کر سکے تو ماں نے سوئسائڈ کر لی یا باپ نے سوئسائڈ کر لی, جذبات کو قابو نہ کر سکے. تو بچوں کو بھی یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ بھائی وہ کون سی ان کی خواہشات جو ہے وہ صحیح ہیں. جب اور بچوں کو یہ دکھاتے رہنا چاہیے, مثلا کہ ظاہر ہے کہ ہم سے بھی تو کوئی نیچے تو ہوگا غربت کے حساب سے یا دنیاوی اعتبار سے, تو جب کہیں آنا جانا ہو تو بچوں کو اس طرح بھی بندہ جو ہے وہ سکھائے. تو بچوں کو بھی سکھائے, خود بحثیت اگر میں گھر کا مرد ہوں, حاکم ہوں, تو سب سے زیادہ تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ جذبات اور خواہشات کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو دین اسلام کے دائرہ کار میں لاؤں. تو انشاءاللہ
منیمائز کرنا چاہیے.
جی,
اس طرح کی خواہشات نا خارش کی طرح ہوتی ہیں, جتنی پوری کرو نا اتنی بڑھتی ہیں.
ایسی بات,
جب آپ کو خارش شروع ہو جائے گا, اب اس کو کریں, شروع شروع میں تو بہت آپ کو ادھر دورا تھا, یوں آئے گا یار اچھا لگ رہا, آہستہ آہستہ یہ عادت ہوتی جائے گی. پھر بغیر خارش کرے آپ کو گزارا بھی نہیں ہے اور تکلیف اتنی ہوگی کہ آپ برداشت بھی نہیں کر سکیں گے. تو بعض اوقات خواہشات کی پوری کرنے کی, اس کو میں نے ایک کتاب میں ایک اصطلاح پڑھی تھی, ضدی قلب. قلب ہے نا یہ ضدی ہو جاتا ہے, اس کو یوں سمجھے کہ بعضوں کی وہ طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بس جو چیز پسند آ گئی, جو چیز ایک دماغ میں بیٹھ گئی نا کہ یہ لینی ہے, اب اس کو لینی ہے, اب وہ اس کو چینج ہی نہیں آئے گا جب تک کہ وہ نہیں لے لے گا. تو ایسی طبیعتوں کے مالک جو ہے نا یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان کی طرف لے جاتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں بھی آپ یا آپ کے گھر کے کوئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو یہ ہوتا ہے کہ بس اب تو یہ لینا ہی لینا ہے, تو یہ درست بھی نہیں ہے یہ سوچ کہ اب لینا ہی لینا ہے, اب نہیں ہے پوزیشن تو کہاں سے لینا ہے.
یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا, کرونا کے اثرات کی ہم بات کر رہے ہیں, جہاں نیگیٹو اثرات ہیں وہاں ایک پازیٹیو پہلو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کے ہاں جو شادی بیاہ میں جو اخراجات ہو رہے تھے وہ منیمائز ہوئے, کم خرچے میں شادیاں ہوں گی نپٹ گئیں, اور بہت سارے سفید پوش لوگوں کا یوں بولیں گے بھرم بھی رہ گیا. لیکن ان حالات میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کی روٹین میں تبدیلی نہیں آئی, اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کا کام ہے دوسروں کی زندگی مشکل کرنا, باتیں کرنا, باتیں سنانا. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک بڑے مختصر سے انداز میں وہ نکاح کی ایک تقریب تھی اور اس طرح سلسلہ کار ہو رہا تھا, تو اب وہ جس کا تھا وہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے, یہ شیئر کر رہا ہے کہ میرے جو رشتہ دار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کمال بات ہے, یوں بھلا شادی ہوتی ہے, یہ کوئی طریقہ ہے تھوڑے سے لوگوں میں یہ کر کے نکاح کر کے آپ جو ہے فنکشن اس کو کچھ نہیں کر رہے, کوئی اس میں کوئی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں گل گپاڑا نہیں ہے, اس میں کوئی دھوم دھڑکا نہیں ہے, دھوم دھام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بگا کے کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو. تو یہ جو طبقہ ہے کہ جس نے اپنی زبان کو ویسا ہی رکھا ہے جیسا پہلے تھی, پہلے بھی لوگوں کو تکلیف دینا ہے, آج اگر کوئی کر رہا ہے اس کی سفید پوشی کا بھرم بھی رہ رہا ہے, وہ قرضے میں نہیں ڈوبے گا, تو اس پر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اور ادھر ایک اور بات بھی ساتھ میں جو مجھے کل ہی جو ہے وہ معلوم ہوئی کہ کسی نے ایک شادی کی, وہ بتا رہا تھا کہ 19 لاکھ روپیہ لگایا, 19 لاکھ روپے لگا کے شادی کی, और एक साल बाद जो है वो खत्म हो गई। और वो बता रहा था कि मेरी शादी हुई है, बड़ी सादगी से हुई है और अल्लाह की रहमत है 9 साल जो है हो गए और सब कुछ।
तो टॉपिक जो है ना ये डिफरेंट है कि ये जरूरी है कि कम खर्च की शादी चलेगी और महंगी शादी नहीं चलेगी।
ठीक,
कई ऐसे हैं जिन्होंने कम खर्च में नहीं, शायद मुफ्त में, मुफ्त तो कहने को कह रहा हूँ, शादी की लेकिन नहीं चली। और कई ऐसे हैं कि जिन्होंने भले करोड़ों रुपए खर्च किए लेकिन आज तक इनका घर खुशी के साथ चल ही रहा होता है। तो गालिबन इस, क्योंकि शादी का ताल्लुक भी ना खर्चे कम या ज़्यादा से नहीं, अगरचे अल्लाह ताला के जो हुकुम के मुताबिक ही होना है जो होना है, ये असल में होता यही है कि मेंटली अंडरस्टैंडिंग का बहुत यहाँ मैटर होता है। और सीधी बात है कि चाहे गरीब की शादी हो या अमीर की शादी हो या मिडिल क्लास की शादी हो, फैमिलीज का आपस में एक दूसरे को शादी से पहले अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के नेचर, कल्चर, आदात, अतवार को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिस कदर मतलब कि आप अपने नेचर, ये मैं हिकमत की बात बयान कर रहा हूँ कि जिस कदर आप शादी को, जो जो दो खानदान मिलते हैं
जी,
वो दो खानदान जिस कदर आदत में, अतवार में, नेचर में, उर्फ और आदत में, रस्म और रवाज में और परवरिश के अंदाज में जिस जितने ज्यादा सिमिलर होंगे ना, मिलते जुलते होंगे, उसी कदर मुमकिन है कि इनका जो मामला है वो ज्यादा बेहतर तरीके से चल सके। क्योंकि लड़का ससुराल की तरफ जाए या लड़की ससुराल की तरफ आए, बहुत ज्यादा अजनबी माहौल जब मिलेगा ना, चेंज माहौल मिलेगा और आदत और अतवार और परवरिश के अंदाज में जब बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेगी तो फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना इतना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसी में बंदा घबरा जाता है कि यार ये क्या।
ठीक
है, तो ये होता है कि अगर, अब इससे बहस नहीं है कि वो किस कम्युनिटी में, इस कम्युनिटी में नहीं, इसलिए मैंने आदतों की बात की, मुसलमान की मुसलमान से शादी होनी चाहिए।
सही,
लेकिन इन चीजों को जो जो कि बहुत मैटर करती हैं, शादी के बाद पता चलता है या अभी नहीं पता चलता। आप देखिए कई लव मैरिज हैं जो टूट जाती हैं
जी।
इसके टूटने की क्या वजह है? आखिर दोनों ने प्यार मोहब्बत में शादी की थी, लड़के तो शादी की ही नहीं थी। ठीक है, वो एक जो वालिदैन की और एक जो इसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, एक दुआएं होनी चाहिए, इसकी कमी रह गई और नाराजगियां उसमें ज्यादा आ गई हैं दोनों खानदानों की मिलाकर। लेकिन इन दोनों ने जब शादी होती है ना, शादी के बाद ये दोनों खानदानों की तरफ मोल्ड होते हैं। अभी तो खानदान से टूट कर मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन जब शादी होती है तो ये खानदान की तरफ इनका मतलब के वो
रुझान
डेफिनेटली खानदान मिलता है। फिर इसके बाद जब आदत, अतवार और नेचर और फैमिलीज का आपस में और तौर तरीके, रस्म और रवाज का जब आपस में तबादला होता है, फिर जब मतलब कि वो परवरिश के असल मामला जब सामने आते हैं कि मेरी परवरिश कैसे हुई थी और मेरी चीजें क्या हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो एक तो ये था। दूसरी बात जो आपने इर्शाद फरमाई कि वो शादी सादगी के साथ, तो अब देखें ये आज से नहीं है, ये नेचर के लोग हैं ना, कोरोना ने इनको कोई असर असर नहीं किया, इनको कोरोना कुछ नहीं बोलता। ठीक है, तो ये आम दिनों में भी किसी की शादी में जाएंगे ना
जी,
तो 50 डिशों के बोलेंगे 55 क्यों नहीं है,
सही,
और 5 डिशों के बोलेंगे कि 25 क्यों नहीं है। ठीक है, ये पर्दे क्यों सही नहीं लगाए, तो ये कपड़ा क्यों नहीं सही नहीं लगाया, तो ये बाज़ औक़ात तनकीदी मिजाज के लोग होते हैं और इनको बस समझे कि बस ये एक एफोर्ड करें आप इनको, इनके बारे में अपनी भी जबानों को, क्योंकि वो बोल के चला गया तो अभी उसकी कीमत कर आपने भी कौन सा फिर सवाब कमा लेना है। वो भी बैठ कर जो बातें कर रहा है, अगर वो दिल आजारियां कर रहा है, लोगों के इज्जतें उछाल रहा है, वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तो आप भी उसकी कीमत करके कौन सा सवाब कमा लोगे? ऐसे लोग आपको सब्र का मौका देते हैं, सवाब कमाने का मौका देते हैं, तो मुस्कुरा कर टाल दें ऐसों की बातें कि इसका वैसे कौन सा रुपया लगा था।
सही,
ना बात करने में रुपया लगा, ना आने जाने में रुपया लगा, 200 रुपये का लिफाफा नहीं दिया होगा, 500 का खाना खा लिया होगा।
सही,
तो ये होते ऐसे किस्म के लोग, तो इनको मतलब के दिल बड़ा करो, ये लिफ्ट लिफ्ट नहीं करो ऐसे को, मगर बस एक जो एक इस्लामी अंदाज है माशरत का उसको बाकी रखे इंशाल्लाह।
माशाल्लाह, ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे जिनकी ये आदत है, जिनके अंदर की उन्होंने हर मसले में कोई ना कोई मतलब, जिसे भी बोले निस्तर चुभोना या कोई ना कोई सुई चुभोएंगे, अगले बंदे को कोई ना कोई बात करेंगे। दोनों तरह
ऐसे लोग
ऐसे थाली का बैंगन नहीं होता,
ऐसे लोगों को तजर्बा होता है, ऐसे लोग कम नहीं है, बहुत ज्यादा अगरचे नहीं है मगर कम भी नहीं है। ऐसे लोगों को तजर्बा होता है कि इन्हें अमूमन दावतों में नहीं बुलाया जाता, ऐसे लोगों को ज्यादातर लोग अपने फैमिली गैदरिंग में जमा भी नहीं करते, ऐसे लोग ये आपको शिकायत करते मिलेंगे भाई हमको तो भूल गए, तुमको भूले नहीं, तुम तो याद थे तभी तो बुलाया नहीं था, जब तुमको भूल गए थे तभी बुलाया था, आप हमको याद रहे थे इसलिए हमने आपको जानबूझकर नहीं बुलाया क्योंकि आप हमको याद थे, क्या आप हैं कैसे, खाली खाली दावत का बेरा गरक करोगे, फितना फसाद करोगे, इधर की बात उधर करोगे, घर में तनकीद करोगे, तो हमने आपको जानबूझ के नहीं बुलाया था, सीधी बात तो यही है। तो ऐसे लोग नॉर्मली अकेले रह जाते हैं और फिर इनको जब मौका मिलता है तो फिर अगली पीछे सारी निकाल भी रहे होते हैं, अब भाई हम तो सीधी बात है सच्ची बात करते हैं, हमारी तो जबान काली है, इनके नज़दीक इनकी जबान से निकला वो हल्ला हक होता है जिसको ये कड़वा समझते हैं, तो ये होते हैं, इनको अल्लाह हिदायत दे
आमीन
कि ये लोगों की दिल आजारियों से बेजा तनकीदों से बचें। और सीधी बात ये है कि अगर जानवर भी मोहब्बत देता, जानवर को भी अगर मोहब्बत मिलती है ना तो जानवर भी उसकी तरफ हो जाता है,
सही।
और नर्म अगर जानवर भी हो ना तो लोग उसकी तरफ भी मायल हो जाए, अभी बकरा ईद गई है,
ऐसी बात,
ठीक है, जो जानवर नरम था बच्चे भी उसे प्यार करते थे,
ऐसी बात,
और जो जानवर तेज था बड़े भी उसे भागते थे, तो इंसानों के जानवर हो, आप नरम होंगे आपकी तरफ लोग आएंगे, आप सख्त होंगे लोग आपसे भाग जाएंगे।
दुरुस्त फरमाया। अच्छा ऐसा आप क्या ख्याल करते हैं, जैसे कोरोना के बाद किस रात की इस तरह की हम बात कर रहे हैं, दावत इस्लामी पर भी एक असर आया ही है, जैसे हमारी जितनी गैदरिंग थी वो बंद हो गई, और आप क्या ख्याल करते हैं कि दावत इस्लामी दोबारा अपनी रूटीन में वापस आ जाएगी, मदनी काफिलों का वैसे ही सफर होगा, वैसे ही इजमात होंगे, फिजान मदीना भर जाएगा जिस तरह इस सरकार होता है, ये होगा दोबारा?
देखिए होगा क्या है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और अल्लाह के दीन का काम है, वो खुद ही अपने दीन के मामलात का मालिक है, हम तो अपनी कोशिशें ही कर सकते हैं, उसकी तौफीक से, सीधी बात यह है। लेकिन पिछले 4-5 माह में इस्लामी भाइयों ने जिस तरह की दुनिया भर में कोशिशें की हैं और जिस तरह के राबते रखे हैं और जिस तरह इन्होंने अपनी इंफरादी कोशिशों को बाकी रखा है और जो अब तक के हालात और वाकयात का इल्म है, तो मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और जब हमारे गैदरिंग शुरू होंगी तो पहले से कई ज्यादा होगी
माशाल्लाह,
और इसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि फौरन हमारे इस्लामी भाई अभी से तैयार हैं, एक एक माह के मदनी काफिले के लिए उन्होंने जदवल तकरीबन बनाए हुए हैं, बड़े बड़े निगरान, बड़े बड़े जिम्मेदारान,
12 दिन की नियत मैंने भी की हुई,
तो ये बनाए हुए अराकीन शूरा से लेकर नीचे तक बड़े बड़े निगरान जिम्मेदार ने पूरे पूरे महीने के जदवल बनाए हुए हैं कि इन्होंने बस थोड़ा सा ओपन होने की देर है, यहाँ तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी अब मजीद चीजें खुली जाएंगी पाकिस्तान में, अल्लाह ने चाहा और अल्लाह करे कि ये खुलता ही चला जाए
आमीन,
और मजीद को ऐसी मतलब कि वो ऐसी लहर ना आए कि जिससे कुछ फैसले जो हो रहे हैं वो वापस ले लिए जाए। तो अलबत्ता ये कि इंशाल्लाह, क्योंकि अब दो तीन चीजें ही मेन है, एक हफ्तावार इज्तिमा है और एक मदनी मुजाकरे के इज्तिमात हैं, तो ये इसके अलावा जो चीजें हैं वो किसी हद तक हमारी फ़ाल भी हैं और बहाल भी हैं
माशाल्लाह,
अल्लाह का शुक्र है। तो ये अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि जब हम मसाजिद में इज्तिमात की गैदरिंग करते थे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस वक्त 2 लाख इस्लामी भाई जमा होते थे, आज हम इंडिविजुअल मुख्तलिफ मकामात पर जैली हल्का सतहों पर दो चंद इस्लामी भाइयों को उसूल कवायद को सामने रख कर जमा करते हैं, तो उनका जो मजमुआ जमा हो रहा है वो 2 लाख से ज्यादा है,
ठीक,
जो टोटल है वो 2 लाख से ज्यादा है, एक ही एग्जाम्पल दिए मैंने, फिगर फैक्ट फिगर नहीं है ये,
सही।
तो अब डेफिनेटली जब आपकी गैदरिंग खुलेगी तो ये जो ऑलरेडी जो आपके साथ प्लस जो आपके साथ वाबस्ता हुए हैं, फिर जो थैलीसीमिया के बाद जो आपसे फैमिली वाबस्ता हुई हैं, जो ब्लड ड्राइव आपने ब्लड डोनेशन की ड्राइव चलाई है, इसके साथ जो 5 लाख नाम तो हमारे जो वेलफेयर की जो मजलिस है उसके पास ऑन रिकॉर्ड 5 लाख नाम है, फैमिलीज यानी 5 लाख घर हैं कि जहां पर इन्होंने राशन और अनाज और ये चीजें पहुंचाई हैं, और इनमें बहुत बड़ी एक बड़ी तादाद है जो नए हैं उन तक पहुंचाई गई है। तो ये सारा जितना भी डेटा हमारे पास डेटा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक मौजूद है। तो जब ये चीज़ें होंगी, अब इनको मदरसतुल मदीना बालिगान की तरफ लाना, मस्जिद की तरफ लाना, तबलीग का काम तो हमारा कोर वर्क है ना
जी।
ये सारी चीज़ें हमारे उस तबलीगी कोर्स को ही प्लस कर रही होती हैं
जी, बिल्कुल।
तो मुझे यही उम्मीद है, उम्मीद की जा सकती है, अल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को सलामत रखे, कि शायद ऐसा लगता है कि वो वेटिंग पर है।
अच्छा।
वो नहीं होता रेस के कोने पर खड़ा होता है लाइन पर, रनिंग क्या दौड़ रहे होते हैं, रनिंग होने
वेट कर रहे हैं कि वो,
और बस वो बस अब पोजिशन में और बस फायर की आवाज है, ठा दौड़ो, ये कौम ने मदनी काफिले में और इज्तिमा की तरफ दौड़ लगा दी।
माशाल्लाह, मरहबा, बड़ी अच्छी बात है।
एक चीज याद करनी थी, इस्लाम में इस पोजीशन में कैसे आ गए कि ये वेटिंग स्टेट में है या रेडी टू वर्क है? बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो इस वक्त इस पोजीशन में है नहीं।
असल में तहरीक जो है ना वो सिस्टम ऑलरेडी चूंकि एस्टेब्लिश है, कोरोना ने आपकी गैदरिंग को इफेक्ट किया है, आपके सिस्टम को इफेक्ट नहीं किया। सिस्टम चूंकि अल्लाह का शुक्र है ऑलरेडी है, अल्लाह की रहमत है, मरकजी मई से शूरा, फिर इनके नीचे तमाम रीजन निगरान, मुल्क और बैरून मुल्क है, इसके साथ साथ जोन निगरान या जो भी हमारे निगरानों का एक जो सेटअप बना हुआ है, उन्होंने इनफरादी तौर पर मशवरे, बल्कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, अगर हम रजबुल मुरजब से शुरू करें, तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मशवरे नहीं किए जितने मैंने अब तक किए हैं। और तो मैंने किए हैं, तो मेरे साथ साथ मेरे कई इस्लामी भाइयों ने किए हैं।
सलमान भी, मैं असल में इसी तरफ आना चाह रहा था, लेकिन जिस अभी निगरानी शोरा ने बयान फरमाया ना कि इतने इस्लाम में रेडी हैं काफिलों में जाने के लिए, तो ये था कि प्री स्ट्रेच इनको तैयार करना। तो जितनी बड़ी दीगर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें क्या ड्रॉबैक आ रहा है कि आवाम लोग जो है ना काम की तरफ आने के लिए इतने मोटिवेटेड नहीं है, बैक टू वर्क आ नहीं पा रहे, वो इंटेंसिटी वो एनर्जी उनमें मिल नहीं पा रही। अब जैसे निगरानी शुरू ने बयान फरमाया कि इन्होंने कितने ऑनलाइन मशवरे किए, फिर सिलसिला दिलों की राहत जो शुरू हुआ, ऐसा उस जमाने में आप लोगों ने बहुत सारे जो डोमेस्टिक वायलेंस जो उस जमाने में जो शुरू हुआ था, इतने स्टेटस से डॉक्टर जीरक भी बताते हैं 35% जो है घर के अंदर मार धार के, जो आप लोगों ने कितने मदनी चैनल के ऊपर ये एड्रेस किए, तलाक के मामला इतने एड्रेस किए हैं, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ही दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें ले ली गई। तो जो लोग मदनी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहे और उन्होंने दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्टरनेटिव काम करना शुरू किया, मुझे अपना ज़्यादा तजुर्बा है वो अफेक्टेड नहीं हुए।
इतने कोर्सेस पिछले 10-20 सालों में नहीं हुए, ऑनलाइन कोर्सेस जितने पिछले 4-5 महीने में हुए, इतने ऑनलाइन अटैचमेंट हमारी नहीं हुई जितनी 4-5 सालों में हुई है। क्योंकि पिछले तकरीबन साल भर से मोर और लेस हम डिजिटल दावत इस्लामी को जिस तरह एड्रेस कर रहे हैं, तो वो कोरोना का तो पता नहीं था कि कोरोना आएगा, लेकिन इत्तेफाक कह लें अल्लाह की रहमत से कि हम इसके कई महीनों पहले से दावत इस्लामी डिजिटल एक मजलिस बना चुके हैं, डिजिटल शोभा बना चुका है डिपार्टमेंट डिजिटल दावत इस्लामी का। तो वो चूंकि ये सारी चीज़ें थी, मदनी चैनल डॉक्टर सलमान ने अच्छी तवज्जो दिलाई, फिर आप देखिए अमीर सुन्नत डेली हैं, उन दिनों 20 रजब उल मुरजब का मोबेश शायद मैं याद पड़ता है, 20 रजब उल मुरजब से हमने दिलों की राहत प्रोग्राम जब शुरू किया, तो पूरा रजब का महीना, पूरा शाबान का महीना डेली रात को तकरीबन समझे कि रात 9:30 बजे 9:30 बजे अब्दुल हबीब शुरू करते थे, और उसके बाद एक लेट नाइट तक होता था, उसके फौरन बाद हाजी इशफाक आते थे नात खाने का प्रोग्राम लेकर। अच्छा, दिन की हमने एक्टिविटीज अपनी मदनी चैनल की तब्दील की, सुबह के नशरियात में आपने चेंजेस पैदा की। तो ये एक दावत इस्लामी का पब्लिक सर्विसेज का एक काम था, क्योंकि हमसे लोग वाबस्ता थे, लाखों करोड़ों फैमिलीज वाबस्ता हैं, इनको इंगेज करना, ये भी एक काम था, और ये है ना खैरुन नास ही मई अनफुउन नास, बेहतर इंसान हो या दूसरे इंसानों को नफा पहुंचाए। इसी में जब कौम को कोरोना की वजह से जब हमारे इस्लामी भाइयों को ये लगवाया, ये मिला ना कि हमें अब राशन बांटना है, हमें रकम बांटनी है, और हमें मिला इतना सारा और हजारों लोगों का पका हुआ खाना, तो ये आप समझिए
कराची में
इससे ज्यादा का हुआ है, इससे ज्यादा का, बहुत ज्यादा का हुआ है। और मतलब बहुत सारे फिगर्स ऐसे हैं जो अभी तक डिक्लेयर ही नहीं है, तो क्योंकि हम मशवरे लेते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है बाद होगा। तो ये जो लाखों लाख फैमिलीज तक पहुंचने के लिए जो इस्लामी भाइयों ने दौड़े लगाई, ये हुआ। मैं पिछले दिनों डॉक्टर सलमान मशवरा कर रहा था, चंद ममालिक ऐसे इंक्लूडिंग पाकिस्तान जिनमें हमारी मजलिस कफन दफन ने कोरोना पेशेंट्स से जो कोरोना से वजह से जो जिनकी डेथ हुई, और आपको पता है कि एज ए मेडिकली तौर पर भी लोगों ने इनसे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए एनजीओ, ठीक है, एज ए वेलफेयर और रिलीजियस वेलफेयर, दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों ने जो कोरोना से इंतकाल होने वाले मुसलमानों को गुसल कफन दफन का जो काम किया, कल तक, कल का मेरा मशवरा हुआ है एक मुल्क का, तो जब मैं मशवरा कर रहा था तो मेरे एक निगरान थे, वो ऑन वीडियो, वो उसी जगह पर थे जहां पर लोगों के इंतकाल हुए थे, और वहां पर बाकायदा हमारे सब किट पहने हुए उनको, मतलब कि वो कफन दफन के सारे मामलात कह रहे थे, मुझे वीडियो बताया था, मंदी मशवरा चल रहा है मेरा, मगर वो हमारे एक रिस्पॉन्सिबल थे, वो वहीं पर वीडियो के जरिए मुझे बता रहे हैं कि मैं अभी यहाँ हूँ और यहाँ, और मुझे एज ए किट बता रहे थे कि ये हमारे मुबल्लिगीन है, ये ला रहे हैं इस्लामी भाइयों को। तो ये दुनिया भर में, इसमें इंडिया में भी हमारे इस्लामी भाई ने किया, आपके यूके में किया, पाकिस्तान में किया, इसके अलावा और भी दुनिया के ममालिक है जहाँ इस्लाम बहने के, लेकिन एज ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, वेलफेयर, किसी तंजीम के वर्कर्स ने इस तरह कोरोना के इंतकाल करने वालों का, अभी पिछले दिनों एक जानने वाले का पता चला कि इंतकाल हो गया, तो मुझे मेरे ही जानने वाले ने बताया कि वो इंतजार करते थे कि कोई कफन दफन वाला मिल ही नहीं रहा, हाथ ही नहीं लगा रहा था, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी वालों ने जाकर सारा निजाम और इंतजाम किया। अच्छा। अगर ये चीज सिर्फ, मैं मुझे ऐसा लगता है, अगर सिर्फ ये चीज प्रॉपरली तैयारी के साथ डिक्लेयर हो जाए, तो मैं, मुझे लगता है इंटरनेशनल मीडिया भी इसको अप्रिशिएट करेगा कि यार ये भी तो लोग है ना जो कर ही रहे हैं।
मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत इस्लामी की मजलिस के तहत जिस प्रोफेशनल तरीके से जो है कफन दफन को लिया गया, फ्यूनरल्स को लिया गया, तो ऑलरेडी वहाँ पे जो जब लोकल अथॉरिटीज को पता चलता है तो उनके अप्रिसिएशन लेटर्स हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से, बाज हमारे शहरों में बिलखसूस बर्मिंगम और दीगर शहरों में पूरे पूरे, यानी कि वो जहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो है वो पूरे पूरे सिस्टम एस्टेब्लिश किए गए।
अब मैं सलमान भाई थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, मैंने चंद एक वीडियोज देखी कल परसों की के लोग बारिशों में फंसे हुए हैं, पानी घुटनों तक और पेटों तक पानी है, पता नहीं सीनों तक भी पानी हो तो पता नहीं, ठीक है, और सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं। अब उसमें क्या हुआ, देखा कि लोग एक दूसरे की भरपूर मदद कर रहे हैं, यानी कोई किसी की गाड़ी पानी में फंसी हुई है, किसी का ट्रक पानी में फंसा हुआ है, किसी की मोटरसाइकिल खराब हुई हुई है, कोई क्या, कोई क्या, कोई क्या, अब लोग मदद करें एक दूसरे की और उन फंसे हुओं को निकाल रहे हैं। ये स्पिरिट है हमारी, सोशल स्पिरिट है, ये हमारी माशरती स्पिरिट है, इसको आप जितना अप्रिशिएट करें कम है, दुनिया में ऐसे चीजें कम मिलती हैं, लोग पड़े हुए होते हैं, अब तो सिर्फ उसकी मूवी बनाते लोग आगे बढ़ जाते हैं, मगर मेरी आंखों ने जो वीडियो थोड़ी थोड़ी देखी, जो सोशल मीडिया पर आपने भी देखी होंगी, मैंने अकेले ने क्या देखी होंगी, आपने भी देखी होंगी, हमारे लाखों करोड़ों लोगों ने देखी होंगी, ये कोई ढकी छुपी बात मैं कर भी नहीं रहा हूँ, आप लोगों को भी शायद इस बात का अंदाजा हुआ होगा।
इसमें एक हमारा साइकोलॉजी में है बाईस्टैंडर इफेक्ट, बिलखसूस यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, अगर 10 इकट्ठे हो गए हैं ना, बाहर के मालिक की बात कर रहा हूँ, उनमें से एक भी आगे नहीं बढ़ेगा, कहेगा हो सकता है वो हेल्प कर दे, वो हेल्प कर दे।
आपके यहाँ
यहाँ देखा जाए
नहीं, एक और प्रॉब्लम भी है, असल में हेल्प करने का दिल कर रहा होता है लेकिन बाद अवकात कुछ कानून, कुछ रूल्स के, पुलिस आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी, वो इनको केयर टेक कर, मतलब क्योंकि मैं टर्की में था, इस्तांबुल में, इस्तांबुल में जो जो ब्लू मस्जिद है, ब्लू मॉस्क कहलाती है, वहां से हम मतलब फिर आ रहे थे, वो टॉपकॉपी म्यूजियम है, वहां ज्यारतें हैं, वहां से हम वापस आ रहे थे, तो पैदल आ रहे थे नीचे की तरफ, वहां ट्रेन भी चलती है, ट्राम वगैरह जो, वहां पर बाकायदा रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कोई भी उसको, हम हमें थोड़ा सा फीलिंग भी करे तो हमें मना किया गया, मतलब हमें बताया गया ये नहीं कर सकते, कानून ही नहीं है, रूल ही नहीं है, आप हाथ लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। बट मैंने देखा डॉक्टर जीरक विद इन अ मिनट सर्विसेज आ गई। अब वो एक जगह थी जहाँ विद इन अ मिनट सर्विस, अब कई जगह मतलब विद इन आवर्स नहीं आती, विद इन अ डेज नहीं आती, तो विद इन अ मिनट तो तस्वुर ही रह गया ना। मगर जो चीजें मैंने देखी और जो चीजें हैं, तो जो पानी में फंसे थे इनको आपने निकाला, तो जो कोरोना की वजह से फंसे इनको भी निकालें। यानी यहां जो मैंने एग्जाम्पल दिए ना, वो सिर्फ इसलिए दिए कि आप और मैं कोशिश करेंगे तो हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी जो है ना, ये निकलेंगे स्ट्रेस से। आपको पता है कि यार फला हमारा जाने वाला है जो कोरोना की वजह से वो नफसियाती तौर पर इफेक्टेड हो गया, इसकी फैमिली नफसियाती तौर पर इफेक्टेड हो गई, आप एक को संभालें, क्योंकि जितने इफेक्टेड हुए ना वो हजारों में, आपके इर्द गिर्द की मैं बात कर रहा हूं, या सैकड़ों में होंगे, और अल्लाह ने जितनों को बचाया हुआ ना वो लाखों करोड़ों में। तो क्या ये लाखों करोड़ों मिलकर इन सैकड़ों हजारों को बचा नहीं सकते? ये वो लोग हैं जिनका मैं कह रहा हूं जो कोरोना वाले नहीं है, उनको कोरोना नहीं है, मगर कोरोना की वजह से ये नफसियाती मरीज हुए, कोरोना की वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आए, कोरोना की वजह से इनकी फैमिली इफेक्टेड हुई है, कोरोना की वजह से इनके बच्चे इफेक्टेड हुए हैं, कोरोना की वजह से इनके घर बार का मसला हो गया, कोरोना की वजह से इनके कारोबार का मसला हो गया, और आपको पता है कि यार ये कोरोना की वजह से बेचारा ये इफेक्टेड हुआ है। अच्छा, इसके पूरे खानदान में समेत किसी को कोरोना नहीं हुआ, लेकिन कोरोना के जो माशी असरात माशरे पर आए, माशरती जो माशी, जो इकोनॉमिकली जो क्राइसिस जो सोसाइटी पर आए, उससे वो बेचारा इफेक्टेड हुआ है। इसकी जो जॉब फारिग हुई है वो इस वजह से हुई है कि वो फैक्ट्री वाला भी इतने अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फैक्ट्री 5-5 महीने से बंद पड़ी हुई है, 6-6 महीने से फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, कैटरिंग, आप जैसे मिसाल के तौर पर शादी हॉल के बारे में पता चला जैसे अब खुले नहीं है, जब खुलेंगे तब देखेंगे। तो मैं सोचता था एक शादी हॉल है, उसमें डेकोरेशन वाले, कैटरिंग वाले, अच्छा वेटर का सोचता था कि वेटर वाले को तो किसी भी शादी के अंदर जाते जाते कुछ खाना थैली में मिल जाता था, जो घर पे जाकर खाना खिला देता था, और उसको टिप भी पलक मिलती थी। अच्छा डाइनिंग, अभी रेस्टोरेंट शायद खुले हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट का जो डाइनिंग एरिया था जहाँ लोग बैठकर खाते थे, वो अब शायद ओपन होगा जब होगा, लेकिन 5-6 महीने तक वो भी बंद रहा है। तो वेटर का क्या होता होगा? मतलब जो वेटर होते हैं वो तो गरीबी लोग होते हैं ना, वो वेटर क्यों है फिर, मैनेजर क्यों नहीं है, गरीबी लोग होते हैं, तो कितने बेरोजगार हो गए होंगे। किचन में जो बावर्ची थे वो कितने बेरोजगार हो गए होंगे, और दुनिया में कितनी बेरोजगारी आ गई होगी। उन बेरोजगार होने वालों में आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आपको नहीं पता, नहीं पता तो क्यों नहीं पता, आप खबरगिरी रखें और उसको आप संभालें। आप समझे को रियासतें संभालेंगी, हुकूमत और रियासतों को संभालना इनको अपना मुश्किल हो गया है, क्योंकि डेफिनेटली जब चीजें, अब मिसाल के तौर पर टूरिज्म है, टूरिज्म भी किसी भी रियासत की आमदनी का जरिया है कि टूरिस्ट आएंगे, फॉरेन करेंसी आती है, फिर इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज फायदा उठा रही होती हैं। तो खुद मतलब के बड़ी बड़ी रियासत है, यानी के माशी तौर पर, इकोनॉमिकली तौर पर, तिजारती तौर पर, यानी कितने हजार डॉलर, कितने हजार डॉलर, शायद 800,000 डॉलर, कितने हजार डॉलर की मईशत जो है ना वो नीचे आई है, बिल्कुल उसका चक्का बैठ गया है। तो अब इसके असरात होंगे, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि क्रिटिसाइज करने के बजाय ये करे वो करे करने के बजाय मेरा आपसे सवाल है, आपने किसी एक को सहारा दिया, अगर देखने सुनने वाले जितने भी हैं हमारे, अगर आप किसी एक को भी सहारा देने में कामयाब हो गए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये कईयों को बचा, कई खुदकुशी से बच जाएंगे, कई और बीमारियों से बच जाएंगे, मेडिकल कंसल्टेंसी का काम भी आप कर सकते हैं अगर आपको तजर्बा है तो, और आपको इजाजत हो तो ये बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं
जी। कॉल शामिल करते हैं।
अच्छा, आज करनी थी कॉल शामिल।
जी जी,
और मैं समझा आ जाइए।
असल में ये मौजू हमारा जो कोरोना के बाद के असरात है ना,
कोरोना के बाद का तो हमने जिक्र किया ही नहीं है, बाद का तो अभी तक तो डॉक्टर भी नहीं कह रहे कि इसके बाद भी कुछ होना है।
सही,
कोरोना के असरात पर हम बात कर रहे हैं, कोरोना अब गया ही नहीं है कि इसके बाद की बात करें, ना अभी तक ऐसी इतला के कोरोना चला जाएगा, तो आप बात कैसे कह सकते हैं।
चलिए ठीक है, बात नहीं कहते जी, कोरोना के असरात ये इसको लेके चल रहे, तो इस पर आप कुछ कहें तो करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ साहब, इस पर भी बात होनी चाहिए,
इस पर होनी चाहिए,
जिसकी जिसकी फैमिली इशू हो गया,
बोले ले रहे थे
डिस्प्यूट हो गया, उस पर भी कुछ बात करनी है, अब वो क्या करे इस पर भी बात करनी है, लेकिन चले कॉल लेते हैं जी।
मोहम्मद शहजाद अतारी अर्ज कर रहा हूँ, निगरान शुरा की आमद मरहबा, तमाम इस्लामी भाइयों की आमद मरहबा। कोरोना के असरात आज का मौजू है, तो निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है, ये सईदी मदनी फूल अता फरमाइए कि कोई भी चीज अपना असर छोड़ती है, लेकिन ये कोरोना के आने से जो हमें समझना चाहिए उसमें क्या मदनी फूल है, और इसी तरह जो लोग इसके असरात से मुतासिर हुए उनके लिए क्या एहतियात है, और जो मौजूदा वक्त है उनके लिए क्या एहतियात है, और इसी तरह या सैयदी आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए क्या सबक लेकर आ रहा है, इस हवाले से मदनी फूल अता फरमा दीजिए, बेहिसाब मकसद की दुआ फरमा दीजिए।
देखिए, अभी थोड़ा सा तो मैं इस पर बयान कर चुका, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 8,800 अरब डॉलर,
मैं भी
8,800 अरब डॉलर का माशी नुकसान इस तो दुनिया भर को तिजारती तौर पर उठाना पड़ा है, 8,800 अरब।
अच्छा, इस पर भी अगर देखा जाए तो ये भी एक यानी कि इंसान के जहन की पैदावार है, देखा जाए अगर इतना नुकसान हुआ है तो खाली सिर्फ इस मुआशी नुकसान से कितने लोग मर गए या उनकी डेथ हो गई या उनका इंतकाल हो गई। मैं इसमें एक हमारी जो गुफ्तगू चल रही है इंशाल्लाह थोड़ा बहुत यानी कि इस पर अगर नफसियाती तौर पर देखा जाए तो अक्सर प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने सलमान भाई को कहा कि भाई कोरोना के बाद, भाई अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, बाद की बात क्या, यही आवाम की भी है कि आज की नहीं आगे की सोच रहे हैं और वो भी मनफी सोच रहे हैं। इसको हमारी साइकोलॉजी में बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजेशन, कि मतलब आप बात को इस हद तक मनफी तौर पर सोचते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल जैसे आप बाज़ दफ़ा देते हैं कि खरगोश के सर पर बैर गिरा और उसने समझा ये आसमान मेरे ऊपर गिर गया, ये इसकी समझे कि वजाहत। अब लोगों में क्या हो रहा है कि ये आगे का बहुत मनफी सोच,
ओवर थिंकिंग इसको कहते हैं,
ओवर थिंकिंग हो जाए,
नेगेटिव वो भी
नेगेटिव थिंकिंग हो जाए और बहुत ज्यादा आगे का सोच रहे हैं। उसका एक तो हल ये है कि भाई आप प्रेजेंट में रहें, ये एक बहुत बड़ी यानी कि काउंसलिंग की टेक्निक होती है कि भाई अभी जो हाल में आप हैं इस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, अभी मैं एक और मिसाल देता हूँ, जैसे आपको सफर करना पड़े, मिसाल के तौर पर 10 किलोमीटर आपने सफर किया, हो सकता है उसमें से 1 या 2 किलोमीटर आपको बारिश के पानी से गुजरना पड़ा, जंपों से गुजरना पड़ा, तकलीफ हुई, हो सकता है वो 2 किलोमीटर आधे घंटे में तय हुआ हो, लेकिन बाकी 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आपका वो आधे घंटे में तय हुआ और पुरसकून था। लेकिन अब हमारी सोच किस तरफ जाएगी, हम किसका तज़किरा करेंगे उस 2 किलोमीटर यानी कि 20% का, उसका असर क्या होगा, मुझे गुस्सा आएगा, मुझे मेरे जिस्म के अंदर एड्रेनलिन रश होगा, मेरी हार्ट बीट तेज होगी, मेरी सांस फूलेगी, मेरे जिस्म के अंदर ये जो केमिकल होंगे ये पट्ठों में तनाव पैदा करेंगे और मैं जो है वो एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस की सिचुएशन अपने ऊपर तारी कर ली। किस वजह से, सिर्फ उस एक मुख्तसर से हिस्से पर नेगेटिव फोकस करने की वजह से, बजाय इसके कि मैं वो जो बाकी 8 किलोमीटर का पुरसकून सफर था उस पर तवज्जो करता। यही कोरोना के हवाले से भी सिचुएशन है कि लोग जो है वो ये नहीं देख रहे कि अभी थोड़ी बहुत जो मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह अक्सर, जैसे आपने भी तज़करा किया, आपने मुझसे पूछा, सलमान भाई से पूछा, कि ओवरऑल जो है हमारी जिंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं इस कोरोना की वजह से। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पास फैमिली टाइम नहीं है, खुला फैमिली टाइम मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुक्र कर रहे हैं कि यार मैं जो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाता था, जो मेरी वो बॉन्डिंग में कमी रह गई थी, मुझे मौका मिला कि मैंने उसको जो है, अब ये लोग पॉजिटिव।
आपको याद है यूके में मैं आपके यहाँ एक नारा लगाता था कि आप फैमिली को टाइम दो, मगर दावत इस्लाम में ये सीख लो कि फैमिली को टाइम देना कैसे।
तो अब जो पॉजिटिव बेसिकली ये है कि अब काउंसलिंग, ये काउंसलिंग है, ये सेशन हो रहा है, ये काउंसलिंग है, दिलों की राहत, मदनी मुजाकरा बेहतरीन काउंसलिंग है, लेकिन हम इन चीजों को लेने वाले बने। अक्सर जो इस वक्त कोरोना की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो है एंग्जाइटी, फियर, स्लीप प्रॉब्लम, डिप्रेशन। अब फिर जब ये बढ़ जाती हैं तो आगे फिर डोमेस्टिक अब्यूज आता है, जो घर में लड़ाई झगड़ा, और वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन सुसाइड। लेकिन अब अगर इसमें देखा जाए इसकी इब्तदा कहाँ से हो रही है, वरी से, फियर से, और इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर हम वही बात, अगर
ये कंट्रोल आपके हाथ में, मगर ये कंट्रोल तब एक्टिवेट होगा जब आपका तवक्कुल बढ़ेगा,
बिल्कुल
अपने रब पर भरोसा बढ़ेगा कि अब तक तो कुछ नहीं हुआ। यानी एक खातून के बारे में बयान किया गया है कि वो जब भी घर से बाहर निकलती ना तो उसको लगता कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, घर की छत गिर जाएगी, घर में आग लग जाएगी, घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो बाहर निकलती फिर घर पर आ जाती, बाहर निकल फिर घर पर आ जाती। वो इस हवाले से परेशान हो गई थी, मैं क्या करूं, जैसे ही घर से बाहर निकलती सोचती घर में कुछ हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा, घर में आग लग जाएगी, घर में ये हो जाएगा। इसको किसी ने कहा कि तू कब से ये सोच रही है, तो उससे कहा इतने अरसे, वो इतने अरसे में कुछ हुआ, कहा नहीं कुछ नहीं होता, बोला आइंदा भी क्यों होगा, बोला हाँ, तू रब पर भरोसा कर। क्या कहा उसने, तो बोले रब पर भरोसा कर, तो तेरे रब ने तुझे बचाया हुआ है ना, वही रब तुझे आइंदा भी बचाएगा। वो औरत कहती है कि उसके कहने से मुझे जो सुकून मिला वो सुकून आज तक मेरे काम आ रहा है। तो असल है अपने अल्लाह पर भरोसा करना कि अल्लाह ताला ने बचाया हुआ अब तक, तो जिनको शिफा मिली अल्लाह ने दी, तो मजीद भी अल्लाह ही आगे महफूज रखेगा। टेंशन लेकर, परेशानी लेकर, घर में लड़ाई झगड़े कर कोई हासिल नहीं है, बल्कि अब तो हालात खुल रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं इंशाल्लाह, और ज्यादा मजीद इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएगी। मैं आपको एक और बात अर्ज करता चलूं डॉक्टर साहब, जिस तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने माल से लोगों की, जिस तरह उनकी वो उनको संभालते रहे हैं, मदद करते रहे, और बड़े बड़े सामान ये उन्होंने अल्लाह के नाम पर तकसीम कर दिए फ्री, और बहुत सहारा दिया है, कुआं खरीद कर सहारा दिया, अनाज तकसीम, अपना गल्ला, अपना माल तकसीम करके सहारा, जबकि नफा, दुनियावी नफा इनके सामने आ रहा है, ताजिर सामने आ रहा है, लेकिन ये अल्लाह के बंदों में अल्लाह के नाम पर तकसीम कर देते थे, दे देते थे। आज वो वक्त है कि फैजान उस्मान गनी को बंदा पाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अब भी जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अब भी लोगों की इस तरह हेल्प आउट करें, क्योंकि लोग परेशान तो हैं ना, अब कोरोना जा रहा, अब आपका हेल्प होना ना वो उनको खड़ा कर देगा। अब ये तक कब तक हेल्प करें, लेकिन अब ये समझे कि फाइनल स्टेज है, अब का जो आपका हेल्प करना है ना वो इंशाल्लाह इनको खड़ा कर देगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ दावत इस्लामी की, अल्लाह ताला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फैजान से हमें मालामाल फरमाए। रजब और मुरजब का जब महीना शुरू हुआ ना, रोजारे क्राइसिस तो आ ही चुके थे, और ज्यादा प्रेशर के साथ रजब के महीने में आए, फिर सारा लॉकडाउन हो गया, सारी ट्रेवलिंग बंद हो गई, इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, इदारे बंद हो गए, जहाँ आपके इदारे बंद हुए दाऊद इस्लामी के भी इदारे बंद हो गए, बहुत सारी चीज बंद हो गई, जब कारोबार बंद हो गया, डोनेशन कहाँ से आएगा। हमें जो बहुत ज्यादा परेशानी थी, मैं बहुत रियली बात करता हूँ, एक रियलिस्टिक चीज आपके सामने रख रहा हूँ, और इंशाल्लाह हजारों इस्लाम इसको एंडोर्स करेंगे। हमारे सामने जो सबसे बड़ी, बहुत बड़ी परेशानी थी वो ये थी कि हमारे 30,000 के आसपास जो अजीर हैं, इम्प्लॉइज हैं, वो अल्लाह ना करे वो इफेक्टेड ना हो जाए, वो बेरोजगार ना हो जाए, क्योंकि चंदे पर तहरीक चलनी थी। चंदा मिलता तो इनकी सैलरीज का सारा निज़ाम बनता। अल्लाह ताला हमारी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन मुबल्लिगात और जिम्मेदारान इस्लामी भाई को सलामत रखे। कह रहे इस्लामी भाई इन्होंने जोर लगा दिया, इन्होंने जोर लगा दिया, मजालिसों ने, निगरानों ने जोर लगा दिया। और इस क्राइसिस और लॉकडाउन के दौर में जब मार्केटें बंद हैं, दुकानें कंप्लीटली बंद है, बिजनेस बंद है, मगर रमजान का महीना था, शाबान का महीना था, लोग देने की पोजीशन में थे, मगर जो देने की पोजीशन में थे वो भी पोजीशन उनकी भी डिस्टर्ब हुई हुई थी, और इफ्तार और सहरी के मसाइल थे लोगों के घरों में। इन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ने अपना पूरा जोर दिया, और ये नहीं कहा जा सकता कि सैलरी ना मिलने की वजह से या सैलरी की प्रॉब्लम की वजह से कोई अजीर दावत इस्लामी के इजारे से फारिग किया गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने इतनी मदद की, और अल्लाह ताला ने ऐसे मददगार पैदा किए, और अल्लाह करीम ने ऐसे ऐसे लोगों के दिलों में बात डाली, और मुझे खुद डायरेक्टली जो बात शख्सियात पार्टी जिसको आप कहते हैं अल्लाह ने नवाजा, उन्होंने मुझे वो हिस्टोरिकल वर्ड कहे जो मैंने 40 साल में नहीं सुने, और उनके वर्डिंग से जैसे कि एक तसल्ली हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसे जबरदस्त मददगार पैदा किए हुए हैं कि आप तो यूं करके। और ये सारी चीजें थी, और अब भी हमारे कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी हम फाइनेंशियली क्राइसिस में हैं। जाहिर हमने खालें जमा की, आपने आउट क्लास काम किया, हमारे मुबल्लिगीन और सबने मिलकर, जमा करने वालों ने भी, इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों ने भी, देने वालों ने भी, आउट क्लास सर्विस थी, हिस्टोरिकल सर्विस थी। दावत इस्लामी ने एक बार फिर हिस्ट्री रकम की है, हिस्टोरिकल सर्विसेज रही इस बार भी, अल्लाह की करोड़ रहमत है, लेकिन रेट बहुत नीचे हैं। हम अपने एज ए प्राइस वाइज और अमाउंट वाइज जो पैसे होते हैं, हम अपने उस टारगेट से बहुत दूर रह जाते हैं कि जिससे हम पूरा साल अपनी तैयारी को चला सकें। लेकिन मैं ये देखता हूं कि अगर ये भी ना होता तो क्या होता। तो अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की है, बड़े मददगार पैदा किए हैं। हम मैंने सिर्फ आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम अपनी इस दावत इस्लामी की ऑर्गेनाइजेशन से मोर देन 30,000 फैमिलीज अटैच हैं, 30,000 से ज्यादा फैमिली अटैच हैं। एक एक फैमिली के अंदर तीन तीन चार चार पांच पांच लोग भी हो तो लाखों लोग हो जाते हैं, और फिर इससे मजीद रिलेटेड और लोग हैं अगर हम इसका जायजा लें तो। अल्लाह ताला की रहमत है। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन इस तरह चलना, फिर अनाज तकसीम करके, ये करके, थैलीसीमिया के पेशेंट के लिए जब ब्लड का प्रॉब्लम आया तो दावत इस्लामी ने वो काम किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का शायद ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसने 30,000 ब्लड डोनेशन इन चंद महीनों में किया हो, जबकि लॉकडाउन सिचुएशन है, लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे, और थैलीसीमिया के पेशेंट बेचारे परेशान है, फैमिलीज परेशान है। अल्लाह ताला मदद करता है आपकी हमारी। आप इरादा तो करें, आप नीयत तो करें, आप अल्लाह के रिजा के लिए उसके प्यारे हबीब की दुखियारी उम्मत के दुखों को दूर करने का इरादा तो करें यार। अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलता है, मदद करता है, बजायर नजर नहीं आ रहा होता, बजायर नजर नहीं आ रहा होता क्या यार आगे क्या करें। भाई आप आगे बढ़े, जहां तक रास्ता नजर आता है वहां तक तो जाओ, जब वहां पहुंचोगे तो उसके आगे रास्ता नजर आ जाएगा। अब बढ़े तो सही, अल्लाह ताला आपको रोशनी अता फरमाएगा, अल्लाह ताला आपको रास्ता अता फरमाएगा। आप चलने की हिम्मत पैदा करें कि मैं चल रहा हूं, बजायर अंधेरा है मगर इस अंधेरे को दूर करने वाली ताकत मेरे रब के दस्ते कुदरत में। आप चलें, आप चलने वाले, अरे चल चल भी कौन अपनी मर्जी से रहा है, चलेगा भी वही जिसको अल्लाह तौफीक देगा। आपके कदम उठेंगे भी तब जब अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा, जब अल्लाह आपके दिल में डालेगा, अल्लाह आपके जहन में डालेगा, अल्लाह आपकी तबीयत में डालेगा कि मैंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करनी है, इनकी मदद करनी है। ये अल्लाह ही की तौफीक से होगा। जब वो जिस रब ने आपको तौफीक दी है वो क्या आपको मंजिल देने पर कादिर नहीं है?
अल्लाह,
जिस रब ने आपको तौफीक दी है वो आपको वसाइल देने पर कादिर नहीं है? बिल्कुल, वही वसाइल देगा, वही मंजिल देगा, वही कामयाबी देगा। آپ بس اپنے رب کے سپرد خود کو کرے مولا میں تیرے بندوں کے لیے تیرے نبی کی امت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے راستے کھول دے. اللہ کریم راستے کھولتا ہے، کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، وہ کریم ہے. اس کی بارگاہ میں دعا کرو تو وہ غار کے منہ پہ لگا اتنا بھاری پتھر ہٹا دیتا ہے.
اللہ
بے بسی میں تو اس رب ہی کو یاد کیا جائے گا نا، ویسے اس رب کو یاد کیا جائے گا، بے بسی میں تو بندہ زیادہ یاد کرتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کرونا بھی گیا نہیں ہے، اس کے اثرات منفی اثر معاشرے پر ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اور مجھے کوشش کرنی پڑے گی. اپنی فیملیز کو، اپنے خاندان کو، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. میں ڈاکٹرز، جو پیرامیڈیکل کا جو عملہ ہے جس نے واقعی ایکسٹراڈنری سروسز دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول کو سلامت رکھے.
آمین.
ہماری دیگر فورسز کے لوگوں نے جو سروسز دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. لوگ گھروں پر بٹھانے کے لیے یہ سڑکوں پر آئے تھے، لوگوں کو بچانے کے لیے، کرونا سے بچانے کے لیے ہمارے پیرا میڈیکل کا اسٹاف کرونا پیشنٹ کے قریب جا جا کر کام کرتے رہے، اور ان میں بعض عاشقان رسول انتقال بھی کر گئے، اللہ ان کو گھر کی رحمت فرمائے.
آمین.
تو ان کی سروسز رہی ہیں، یہ بھی تو کام ہی کر رہے تھے نا، ان کو تو وہی تنخواہ ملی تھی جو تنخواہ پہلے ملتی تھی ان کو تو وہی، لیکن بعضوں نے تو والنٹری کام کیا ہے. تو یہ آپ کو ایز اے نیشن، ایز اے مسلم، آپ کی میری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے آقا کی جو خیر امت کو فائدہ ہو.
سبحان اللہ.
اور میری دوبارہ درخواست ہے، دعوت اسلامی ابھی بھی فرنٹ پر ہی ہے، پیچھے نہیں ہٹی ہو، نہ انشاءاللہ کبھی پیچھے ہٹے گی، چاہے وہ کرونا کے پرابلم ہو یا اور دیگر میڈیکل پرابلم. ہم انشاءاللہ ایک نیا شعبہ قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہیلتھ کیئر کا شعبہ قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کی بھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا، اللہ نے چاہ تو ایک دن بیٹھ کر، کہ ہم اللہ کی رحمت سے بہت عظیم شعبہ قائم کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ میڈیکلی طور پر بہت زیادہ ہم آپ کو فیسیلیٹ کریں گے انشاءاللہ. جب ہم ایز اے ویلفیئر کام کر ہی رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ کام دعوت اسلامی آپ کو کر کے دے گی جو شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا یا کم سنا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو لیکن چونکہ ہمارا ایک بیسک کام مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، مدرسہ دار المدینہ، مدرسہ المدینہ، جامعۃ المدینہ، علماء پرووائڈ کرنا، حافظ پرووائڈ کرنا، مبلغ پرووائڈ کرنا، امام پرووائڈ کرنا، یہ سوسائٹی کی بہت بڑی خدمت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اپنا کام جاری رہنا چاہیے، اصلاحی امت کا کام، خوف خدا، عشق رسول کو عام کرنے والا کام، وہ مل جل کے کریں گے انشاءاللہ.
مرحبا.
کالس لے میرا خلے.
جی جی.
میں مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عبداری. میٹھے میٹھے نگران شورا کا جو سلسلہ ہے، اس کے اندر میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی قوم اندرونی یا بیرونی وبا کا شکار ہو جاتی ہے تو معاشی بحران کا تو سامنا ہوتا ہی ہے، وہاں کاروباری لوگوں کی تجارت کے مسائل بھی بڑھتے ہیں، تو بیماری، قرض داری، بے جا مقدمہ بازی کا شکار اسلامی بھائیوں کو طرح طرح کے مسائل گھیر لیتے ہیں. اس صورتحال میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، جبکہ دعوت اسلامی کے ساتھ نیکی کا مدنی جذبہ بھی اجاگر رکھنے کے لیے کیا انداز اپنانے چاہیے تاکہ ان مسائل کے ساتھ ساتھ مدنی کام بھی بحال رکھا جا سکے. اس بارے میں اپنے مدنی مشورے آپ کے ہیں، وہ ہمیں عنایت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے، مشورے کرتے رہے، مشوروں میں شرکت کرتے رہے. اور میں یہ عرض کروں گا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کا جذبہ رکھیں، اور آپ اللہ کے دین کے لیے خود کو میدان عمل میں لائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی مشکل دور کرے گا.
ماشاءاللہ.
اور کافی مشکل آسان ہو جائیں گی، اور ہوئی ہیں الحمدللہ. آپ دعوت اسلامی والوں کو کھنگال سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں جب ہم سڑک پر رہ کر خدمت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی مدد کی.
ماشاء اللہ. مرحبا. ایسا میں اس پر بھی آنا چاہ رہا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے فائنینشیل پرابلم ہوا، گھریلو ڈسپیوٹ ہوا، ہر جگہ طلاق ہوگی ہوگی ضروری نہیں ہے، بعض جگہوں پر ناراضگیاں ہو گئی ہوں گی، جو ہے نا وہ روٹ ناراض ہونا، معاملہ اپنے گھر پہ چلے جانا، یہ ہوا ہوگا. سچویشن اسٹل ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی، یعنی جس پرابلم کی وجہ سے ڈسپیوٹ یا گھر میں جھگڑا ہوا تھا وہ ایشو ویسے کا ویسا ہی ہے، لیکن اب اس ڈسپیوٹ کو بھی ختم کرنا ہے اور واپسی کی طرف بھی آنا ہے، तो कौन कदम उठाए, क्या कदम उठाए। पहला कदम उठाए कि इशू तो चलो जो है उससे बंदा थोड़ा मुकाबला करता रहे, लेकिन ये जो बदमजगी की आपस में या झगड़े की या नचाकी की फिजा है ये भी खत्म हो जाए।
जो कहते रहते लेडीज फर्स्ट तो लेडीज कदम उठा ले, जो नहीं कहते रहते वो मर्द कदम उठा ले।
अल्लाह सही है, ठीक है। लेकिन इशू तो वैसे का वैसा बाकी है,
कदम उठ जाएगा तो इशू खत्म हो जाएगा। ये कदम, ये जो इशू है ना, ये इशू, ये मेरा पाँव है ना, ये इशू एक ठोकर की मार है बस।
अल्लाह
आपका ये पाँव उठा इशू खत्म करने के लिए, तो आप ये पाँव नहीं उठा रहे, आप इशू को ठोकर मार रहे हैं। ये ठोकर मारते हो आगे बढ़े, पाँव रखे, ये इशू गया, आप आगे रास्ता बनाए।
सही। तो इसमें अगर कोई इस तरह के अफराद है कि भाई बड़ा मतलब नाराज होके गई थी, अभी फिर मतलब 100 जूते भी खा लिए, 100 प्याज भी खा लिए, अभी फिर वापस आ गई है,
अपने घर आइए ना।
नहीं वो तो चले आ गई है, लेकिन ये इस तरह की जो बातें कर रहे हैं इनको, इनका भी तो कोई इलाज होना चाहिए।
4 दिन बातें करेंगे आपको अपना घर चलाओ, इनकी बातों में क्यों आ रहे हो। तोड़ोगे तभी बातें करेंगे, जोड़ोगे तभी बातें करेंगे, तो जोड़कर सुन लो
बातें। सुभान अल्लाह। घर को मेंटेन रखने के लिए और संभालने के लिए आप क्या ख्याल फरमाते हैं, मर्द का कितना किरदार है, औरत का कितना किरदार है?
मर्द का ज्यादा किरदार है, बर्दाश्त करे, सब्र करे। औरत के बारे में हदीसों में वैसे ही सराहत आ चुकी है।
सही।
और जो औरतों के बारे में सराहत आई है, वजाहत आई है, ये मर्दों को बयान की गई है।
सही।
औरत का ये नेचर होता है।
ठीक है सब। आप क्या फरमाएंगे कि बंदा जो है वो कोई हुनर भी सीखे, क्योंकि देखा ये गया है कि जो बंदा हुनर जिसके पास होता है ना जी, वो किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव जो है वो कर ही लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर जिसने खाना पकाना है, अगर खाना बनाना बंदे को जो है वो आता है तो ये एक हुनर है, इसकी जरूरत भी लोगों को पड़ती है, चले काम भी हो जाता है। लेकिन कपड़े सीने की बात कर लें आप डॉक्टर, ईद आती है लोग कपड़े जो है वो सिलवाते हैं, तो अगर हुनर आता है ये कपड़े सीने का तो भी बंदा यूं बोले जॉब चले रहेगी तो ये काम करके भी अपना जो फाइनेंशियल जो सर्कल है इसको बंदा जारी रख सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे बंदे को कौन सा हुनर आना चाहिए?
वो अल्टरनेटिव बंदा अपना बना के रखे।
सही है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी नौजवान को देखते और वो उन्हें अच्छा मालूम होता तो दरियात फरमाते, क्या तुझे कोई काम आता है? अगर जवाब मना में करता है, नहीं कोई काम नहीं आता, तो आप फरमाते ये नौजवान मेरी नजर से गिर गया है।
हाय हाय।
तो ये जो हुनर आना तुम्हें, ये ढूंढ रहा था मैं।
सही।
हुनर जो है ना ये आना चाहिए। यानी मैं कभी सोचता हूँ कि हमारे घर में छोटे मोटे कारपेंटर टाइप के काम आ जाते हैं, हम नहीं कर पाते।
सही।
अब 2-4 लॉक ही सही करने हैं, थोड़ा हैंडल सही करना है, स्क्रू ड्राइवर होगा, प्लास व्लास होगा, छोटे मोटे प्लम्बरिंग के काम होते हैं, छोटे मोटे, हमसे नहीं हो रहे। छोटे मोटे इलेक्ट्रिक का काम होता है, बोर्ड खोलना होता है, लगाना होता है, करना होता है, हमसे नहीं हो रहा होता। और ये लाखों लाख लोग हैं जिनसे नहीं हो रहा होता, हालांकि ये बहुत छोटे छोटे हाउस मेंटेनेंस के काम है।
सही।
मिसाल के तौर पर एक शख्स को थोड़ी सी ड्रिल चलाकर कीली लगानी है कि फ्रेम लटकानी है, मदीना शरीफ की फ्रेम लिया सब गुम्बद की लगानी है, उसके लिए भी उसको बाकायदा बुलाना पड़ेगा, यार कील लगा दे। और वो जाते जाते 100 रुपये मांगेगा, 200 रुपये मांगेगा, फिर 100-200 रुपये आप अपने बचा सकते थे। ठीक है, ये छोटे छोटे काम है। अच्छा, ये वो काम है कि अगर ये काम आ रहे होंगे तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा कि आप अपने आप को घर में मसरूफ रखेंगे।
सही।
ना हमें डस्टिंग आती है, ना हमको झाड़ू आता है, ना हमको पोछा आता है, ना बर्तन धोने आते हैं, ना कील लगाने आती है, ना कील निकालने आती है। हमसे तो इतना भी नहीं होता कि हमारे वो पलक में से तार निकल गया है तो नया पलक लाकर उस तार को ही लगाकर बंद करके उसको भी इस्तेमाल कर ले, वो तार खुला है तो खुला है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। यानी कि हुनर की तो बात दूर की बात है, ये जो घर के जो छोटे छोटे से जो काम है ना, ये भी हमसे नहीं हो पा रहे। हमसे मतलब कि बिल्कुल वो बेसन भर जाती है तो वो हमसे नहीं साफ हो पाती। हमसे हमसे होता क्या है ये बताओ यार सलमान भाई, क्या होता है? हमसे कुछ भी नहीं हो रहा होता, हमसे कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो इस हालत के अंदर आप किस हुनर की बात कर रहे हैं? ये तो घर के मेंटेनेंस के वो काम है जो आदमी को तो आने ही चाहिए थे। छुट्टी है वो खुद ही मतलब के जो ऐसी साफ सफाई के काम है जो मर्द कर सकता है वो करे, عورتوں کے ساتھ گھر کے بچوں اور بچوں کے ساتھ مل کر کریں.
تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ بندہ گھر میں پنکھے صاف کر رہا ہو؟ پنکھے بھی اگر بندے نے صاف کرنا ہے تو خاتون نے کھانا پھر کیا؟
نہیں, عورت کا کام نہیں ہے پنکھے صاف کرنا, کیونکہ وہ مطلب اس کو آپ پنکھے آپ صاف کر لو, وہ ضروری ہے کہ عورت ہی پنکھے صاف کرے گی. عورت پوچھا لگانے میں عورت کمفرٹیبل ہے, اوپر چڑھ کے پنکھا درست کرنے میں یا پنکھا صاف کرنے میں وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. وہ آپ سے نہیں کرے گا پوچھا لگاؤ, ٹھیک ہے؟ اور اگر دونوں کام آپ بھی کر لیتے ہو تو گھر کا ہی کام ہے نا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تو گھر کے کاموں میں حساب لیا کرتے تھے نا, ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنے یہ گھر کی جو چیزیں ہیں نا, اس میں اگر ہم جیسے لوگ مرد حضرات انوالو ہو جائیں نا وہ بھی اچھا ہے. آپ کو کبھی عورتیں نہیں کہا ہے کہ گھر کی عورتوں کے کہ چاول آپ پکا لو, سالانہ پکا لو, مچھلی آپ دھو دو, مسالہ آپ چڑھا دو, کبھی ہم کو کہا ہی نہیں, نام ہی آتا ہے. اور میں نے ان کے تذکرے بھی نہیں کیے آپ سے, ٹھیک ہے, کہ بھائی مسالہ آپ برنی میں ڈال دو, تو یہ برنی آپ دھو دو, تو یہ چینی آپ ڈال دو. چینی لانے کی ذمہ داری آپ کی تھی, مگر چینی ڈالنی رکھنی اس کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. تو یہ جو بڑے بڑے میجر کام ہیں گھر کے, وہ تو کم از کم گھر کا مرد لڑکا یا بیٹا کر سکتا ہے نا.
اچھا, ہنر میں جیسے آپ نے تذکرہ کیا, تو ظاہر اب میں بات اپنی طرف لاؤں گا, گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں, ریلیشن شپ ہوتے ہیں, تو ہمیں ایک ہنر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ مثال دیتے ہیں نا, چھوٹا کام تھا نہیں کیا, بعد میں بڑا ہو گیا, تو اسی طرح ہمارے رشتوں میں بھی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہونا شروع ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں ایک ہنر ہونا چاہیے کہ یہ جو پرابلمز آتی ہیں ریلیشن شپس میں, یہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو شروع میں کیسے بھرا جائے, کہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس میں سب سے زیادہ بڑوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا, یہ میرے خیال میں ہماری لسٹ میں ضرور ہونا چاہیے. آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے, یہ بڑوں کو کوئی مطلب اکثر جو ینگ ہیں وہ نہیں اہمیت دیتے, لیکن ان بڑوں کے پاس زندگی کے تجربات ہیں جن سے ہم یہ ہنر کہ اپنے گھر کو صحیح طرح سے کیسے چلانا ہے, اور بالخصوص مردوں کے حوالے سے یہ ہنر.
ہمارے فیملی کے کئی بڑے ہیں جن کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے, اور واقعی وہاں سے ایکسپیرینس لیا جا سکتا ہے. مگر ڈاکٹر زیرک, ایکسپیرینس ڈیلیور کرنا بھی ایک فن ہے. آخر نوجوانوں کو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ اپنے بڑوں سے ایکسپیرینس لیں, لیکن بڑوں کو یہ سکھانا سمجھانا ضروری ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس ڈیلیور کیسے کرنا ہے. ان کو ڈیگریڈ کر کے, ان کو ذلیل کر کے, ان کو جھاڑ کر, ان کو ڈانٹ کر, یا مطلب کہ وہ ایک ہی سٹوری کو بار بار ریپیٹ کر کر محض اپنے ہی کارنامے بیان کر کے, تو یہ تو ایک دن تو بیٹھیں گے آپ کی میری بات سن کر, لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے. یہ تو بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شفقت, پیار, محبت, نرمی, اور ہفتہ, دس دن, پندرہ دن, بیس دن میں کوئی ایک بار لے کر بیٹھیں, ڈیلی لے کر بیٹھیں گے, ڈیلی سمجھانا شروع کریں گے, ڈیلی ٹوکنا جھاڑنا شروع کر دیں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے آپ کا سمجھانا کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گا, بلکہ یہ الٹے اور دور ہو جائیں گے.
صحیح کہا, اور ظاہر ہے کہ یہ بھی چیزیں کہ مجھے دوسرے کو کس طرح سکھانا ہے, بنیادی ایک بات ہوتی ہے کہ اگلے کا ایک تو پوائنٹ آف ویو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, وہ کیا کہہ رہا ہے, ہوتا کیا ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں ان کو اسیس کرتا ہوں, اور اکثر یہاں پہ میاں بیوی میں جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, میرا موڈ کچھ اور ہے, اور میں جناب کسی اور سینس میں اس بات کو لے رہا ہوں. تو ایک تو یہ بھی کہ بھئی اگلے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا, اور واقعی کون سی چیز ڈیلیور کیسے کرنی ہے. آپ کو پھولوں کا دستہ لا کے تو مارے منہ پر, تو ظاہر ہے اسے تو قبول نہیں کیا جائے گا, اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے پیش کرنے کا. اور میں ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, اور اپنے اعمال کا محاسبہ, ایک تو ہمارا مذہبی طور پر ہمارا ہے کہ کون سی نیکیاں ہوئیں آج اور ان میں مزید اضافہ کرنا ہے, مدنی انعامات, لیکن ایک محاسبہ اس حوالے سے بھی ہونا ضروری ہے کہ آج جو میرے گھر والوں کے ساتھ معاملات ہوئے, میں نے بچے کو سمجھایا یا گھر والوں کو سمجھایا یا بہن بھائی کو سمجھایا, اس پر بھی غور کرے کہ یہ سمجھانا میرا کیسا تھا, اس میں کون سی کمیاں تھیں, اگلی دفعہ اگر مجھے کرنا ہے تو اس کو مجھے کیسے مزید بہتر کرنا ہے. جب تک یہ محاسبے والا عمل نہیں ہوتا نا, तो ये ऐसे ही है जैसा मुताला करके बंदा गौर और फिक्र और तदब्बर ना करे, वो मुताला आपके जहन से अक्सर निकल जाए।
समझाने के ताल्लुक से मैं एक बात आखिर, चूंकि अब चंद मिनट रह गए, मैं एक बात आपको अर्ज करता हूं। सलमान भाई, जब आपको कोई ऐसा शख्स जिसके तजर्बात से, जिसके इन पर और जिसकी जुमला चीजों पर आपको बड़ा इत्माद भरोसा है कि नहीं यार ये मेरा खैर ख्वाह है स्पेशली, और यूं उमूमी तौर पर भी लिया जा सकता है, जब ऐसा शख्स आपको आपकी किसी आदत पर समझा रहा है ना, या दो लोग बैठकर आपको बुला रहे हैं या बैठे हैं समझा रहे हैं यार प्लीज, तो इसमें दो चीजें आएंगी, या तो आप ये लोगे कि यार वाकई मुझ में ऐसा है, या आप लोग यार इनको कोई गलत फहमी हो गई है, मुझे तो ऐसा है ही नहीं। और जब लोग ये सोचते हैं ना कि यार ये मुझ में है ही नहीं और ये मुझे बैठकर समझा रहे हैं, तो ऐसे आदमी की इसलाह नहीं हो सकती। मतलब बंदे को उसी वक्त नोटिस लेना चाहिए जब आपको, मतलब ये ना बहुत बड़ा काम एक चीज होती है, मैं आपको बताऊं, जो जो हसास है सेंसिटिव है वो शायद मेरी बात समझेंगे, यार आपको बैठकर मोटिवेट किया जा रहा है, आपको बैठकर समझाया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपकी आदत दुरुस्त नहीं है, अब सीरियस हो जाओ, वो बंदा कब तक आपको समझाएगा? फिर एक वक्त आता है कि लोग समझाना बंद कर देते हैं
जी।
और समझाना जब बंद करते हैं ना, तो उसकी वो आदत में अब इजाफा होना शुरू हो जाता है और फिर ये नुकसान उठाता है
जी।
तो जब ये नुकसान उठाता है ना, तो अब अपने नुकसान की जिम्मेदारी खुद पर डालने के बजाय ये दूसरों पर डालना शुरू कर देता है। अरे भाई, आपको तो नोटिस दिया गया, आपको तो समझाया गया, आपकी इसलाह की कोशिश की गई, आपने इसलाह कबूल ही नहीं की। वो एक बड़ा प्यारा एक वाकिया समझाने के लिए कोट किया गया है, जाते जाते मैं अर्थ करता चलूं कि जैसे बारिशों का मौसम है, तो एक मखसूस पेड़ था, उसके नीचे एक शख्स, बारिश हो रही थी तो वो मखसूस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, दरख्त के नीचे, तो किसी ने कहा भाई यहां से हट जा, बिजली यहां ज्यादा गिरती है, अल्लाह बचाएगा, वो बचाने वाला है, चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आया, कहा गया भाई यहां से हट जा, यहां बिजली ज्यादा गिरेगी, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाने वाला है, वो भी चला गया। तीसरा शख्स आया, उसने भी इसकी समझाने की कोशिश की, भाई यहां से हट जा, बिजली यहां ज्यादा गिरती है, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाने वाला है, वो भी चला गया। थोड़ी देर बिजली आ गिरी और वो खत्म हो गया। एक शख्स देख रहा था, कहा कि यार ये तो इतना बोल रहा था अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाने वाला है, ये इसके साथ क्या हो गया? तो एक और शख्स ने इसको कहा कि अल्लाह ताला ने इसको बचाने के लिए तीन आदमी भेजे थे। इसने नोटिस ही नहीं लिया कि ये मुझे बाकायदा अल्लाह की मदद आ रही है, अल्लाह मुझे बचा रहा है, अल्लाह मुझे यहां से हटने के लिए अपने बंदे भेज रहा है जो मुझे समझा रहे हैं घर जा, लेकिन मैं हूं कि समझने का नाम नहीं ले रहा। तो जो लोग इस तरह के सिग्नल को लेने के लिए, जिनके अपने एंटीना और डिश एंटीना ही, या इनके वो बूस्टर ही खराब हो गए, इनका रेडार ही काम नहीं कर रहा कि यार मुझे समझाया जा रहा है, मेरी इसलाह की जा रही है, मेरे पास मुरब्बी भेजा जा रहा है, मुझे मेरे पास मुसले भेजा जा रहा है, मुझे समझाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन मैं हूं कि इसी में हूं कि नहीं अपने उसमें रहता हूं, तो ऐसा करने वाला शख्स अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान उठाता है। यानी एक शख्स ने एक ऐसी जगह एक अपना मकान बनाया कि वहां से पानी बहता था, तो उसको किसी ने जाकर बोला भाई तू यहाँ पानी मकान बना रहा है, यहाँ जब वो सैलाबी रेला आता है ना सब बहा के ले आता है, बोला यार अभी तो नहीं है ना, तुम देखो तो सही यार नहर बह रही है, ये खूबसूरत है, बोला ये खूबसूरत नहीं है, सारा कुछ तब होगा जब तू बचेगा, जब ये आएगा सैलाबी रेला तो तुझे बहा के ले जाएगा, बोला अभी कुछ नहीं होता, नहीं लिफ्ट करा इसने, आखिर से घर बनाया और थोड़ा सा मजे लिए, सैलाब आया उसको बहा के ले गया, ना बंदा रहा ना वो माहौल रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो जो लोग समझते नहीं है, नोटिस नहीं लेते और अपनी इसलाह नहीं करते और सिर्फ इस गुमान में रह जाते हैं कि सामने वाले को मेरे बारे में गलत फहमी हो गई है, तो बाद ये बहुत बड़ी गलती पर होते हैं। ये बात दुरुस्त है, کہ آپ کے تعلق سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، مگر آپ کو کی گئی ہر بات غلط فہمی پر مبنی ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ اپنے فائدے کی بات لیں اور اپنی اصلاح کی طرف دھیان دیں، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کورونا سمیت دیگر بلا اور آفتوں سے اللہ بچائے، محبت پیار اتفاق کی فضا قائم رکھیں. معاشی طور پر جو پریشانی آئی ہیں اسے اپنے طور پر مل جل کر دور کرنے کی کوشش کریں، اسٹریس نہ آنے دیں، بیمار نہ ہوں، ڈپریشن کے مریض نہ ہوں، گھلے ملے رہیں، فیملیز کے ساتھ رہیں، صلہ رحمی کرتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کریں، زیادہ تر قرآن کریم کی تلاوت کریں، با وضو رہیں، مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کریں، لوگوں کی غم خواری کریں، سلام کریں، سلام کا جواب لیں. اس طرح کے دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں، ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، نعتیں سنیں، نعتیں پڑھیں، روئیں، اللہ کے حضور روئیں، رسول پاک کی بارگاہ میں روئیں، مکے مدینے نہیں جا سکے اس پر روئیں. یہ وہ غم ہے کہ جو دنیا کے غموں سے نکال دیتا ہے، یعنی جسے غم آخرت ملتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے غموں سے بچا لیتا ہے. تو ان غموں کی طرف جائیں، ان 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 سوچوں کی طرف جائیں کہ میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا عشر میں کیا، یہاں پیسے نہیں ہے میں دنیا میں نہیں رہ سکتا، نہیں کیا نہیں ہے تو میں قبر میں کیسے وقت گزاروں. اپنی سوچوں کو پوزیٹیویٹی کی طرف لائیں، اور کرونا سے مرنے والوں کی تعداد اور بغیر کرونا سے دنیا میں مرنے والوں کی تعداد کا فگر لے لیجئے کہ کرونا کی وجہ سے اگر 1000 آدمی دنیا سے گئے ہیں تو بغیر کرونا کی وجہ سے 10,000 آدمی ہو سکتے دنیا سے چلے گئے ہوں. تو ضروری ہے کہ کرونا سے ہی بندہ مرے گا یا کسی اور اس طرح کی بیماری سے مرے گا، مرنے کے لیے تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بندہ مر جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ مر جائے گا، مرنا تو ہے ہی نا. تو کہتے ہیں نا کہ قبر اشر میں کیا ہوگا، آگے کی سوچیں، یعنی ہم وہاں کی سوچتے جہاں مرنا ہے، وہاں کی سوچتے ہی نہیں جہاں مرنا نہیں ہے. یہاں مرنے کی پابندی ہے، وہاں جینے کی پابندی ہے، وہاں جینے کی پابندی ہے، وہاں موت کو موت آئے گی، یہاں ہمیں موت آئے گی. ہمیں جہاں سے جانا ہے، یہ مکان جس میں آج جو میں رہ رہے ہیں نا، یہ آپ کا میرا پرماننٹ نہیں ہے، یہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہاں سے تو ہمارا سفر شروع ہوا ہے. ہمارا فائنل آگے کا سفر ہمارا قبر کا ہے، پھر قیامت کے دن اٹھنے کا ہے. 50,000 سال کا وہ محشر کا دن ہے، اس میں حساب کتاب ہے، میزان ہے، جزا اور سزا کا معاملہ ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہے، وہ سارے آگے کے معاملات ہیں، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے. اور وہاں کے لیے آسانیوں کے لیے نیکی، پرہیزگاری، تقویٰ، رب کی رضا، عشق رسول کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے حصول میں بندہ لگ جائے
سبحان اللہ.
تو یوں سمجھیے کہ بہت ساری چیزیں باقی ہے کہ بڑے دنیا کے معاملہ، تو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو یہاں جینے کا اسباب بھی وہی پیدا فرما دے گا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق دینے کا ذمہ لیا ہے، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا. اللہ اپنے کرم سے اپنے ذمہ کرم پر لے رہا ہے، اپنے ذمہ لے رہا ہے، اس کا کرم ہے صرف. تو اللہ نے ہر رزق دینے کا تو ذمہ لیا کہ میں ہر ایک کو رزق دوں گا، زمین پر رہنے والے ہر جاندار کو رزق اللہ نے دینا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی مغفرت کا ذمہ لیا؟ نہیں. جس چیز کا ذمہ رب نے لیا تم اس پہ پریشان ہو، جس چیز کا ذمہ رب نے نہیں لیا وہاں کی پریشانی نہیں ہے. اور یہ بات طے ہے کہ ایک تعداد ہوگی مسلمانوں کی جنہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے،
آمین،
بلا حساب جنت میں داخلہ دے،
آمین.
اس طرف سوچیں، اس طرف آئیں تاکہ ہماری قبر و آخرت بہتر ہو. دنیا کے غموں میں گھلنے سے اچھا ہے بندہ قیامت، حشر اور قبر کے غموں کو یاد کرے تو وہاں گھلتا نہیں ہے، کھلتا ہے.
اللہ،
یہاں برباد ہوں گے، وہاں آباد ہوں گے.
سبحان اللہ.
یہ دونوں الگ، دونوں کا نام غم ہے. دنیا کا غم تمہیں برباد کر دے گا، آخرت کا غم تمہیں آباد کر دے گا.
سبحان اللہ.
اس غم کو لو جس غم میں غم سے چھٹکارا ہے. ہم نے اس غم کو لیا ہے جس غم کو پڑھنے کے بعد غموں کی لائن لگی ہوئی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
آمین.
صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد.